आजाद है तेरे। बोल की जहां तक तेरी है लहरों के दोष पे आवाज के इस खूबसूरत दृश्य से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बोल क्लब आजाद है तेरे। 4 बजे से लेके 6 बजे तक 4 PM to 6 PM तूफान हो, बिजली कड़के मौसम जैसा भी हो, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कभी हम और कभी हमारी रिकॉर्डिंग्स, जैसे मैं और मेरी तन्हाई अक्सर आप लोगों से ये बातें करते रहते हैं कि स्टूडियो का नंबर है जी 9725019390। जस्ट इन केस अभी तक नहीं मालूम, इतनी दुनिया सुन रही है लेकिन फिर भी रेडियो आजाद वे योर वॉइस मैटर्स सुन रहे हैं जी आप तमाम सुनने वालों को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। और आज के पहले लकी कॉलर, बट उससे पहले शो का प्रेमिस मान लें हम, आज ये शो पार्ट 2 है हमारे रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स का, तो इन कंटिन्यूएशन टू दैट कोशिश करेंगे जी। आज पिछले शो में तो आपने इतनी कॉल्स की, इतने पॉइंट्स दिए, अब हमने साथ सजेशंस भी देनी है कि जी ये मसाइल हैं, इसको ऐसे हैंडल किया जा सकता है, अगर हम ऐसे करें तो कैसा रहेगा, आपका क्या ख्याल है, लिसनर्स का क्या ख्याल है। पॉइंट्स पिछले शो को खूबसूरत बनाने का, इतनी कॉल्स और उसके बाद जो मुझे मैसेजेस आते हैं, जो लोग अपने कमेंट्स देते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऑन एयर नहीं आते, वो लोग भी ऑन एयर आइए आज, और बिल्कुल वैसे ही घमसान करण, यानी कि उसी तरह का शोर शराबा और उसी तरह के पॉइंट्स ऊपर नीचे आते रहेंगे, तो ये 2 घंटे आपकी संगत में और आसानी से कट जाएंगे और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक, नंबर है स्टूडियो का 9725019390। कोई मेहरबान हमारे साथ, रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जब तक आपकी दुआएं हैं जी हम ठीक रहेंगे
जी। अच्छा, बहुत जबर पार्ट 1 बहुत जबरदस्त हुआ था और सारे आपके कॉलर ने बहुत अच्छे पॉइंट दिए थे, और सारे पॉइंट्स में जो मुझे सबसे प्यारा पॉइंट लगा था वो आपने जो एक बात कही थी ना, बस उसके ऊपर लाइक आप समझ ले कि वो एंड है। आपने जो कहा था कि सब कुछ है ठीक है, पेरेंट्स के भी बैर, वो भी इंसान है, उनसे भी कुछ गलतियां होती हैं, बच्चों से भी होती हैं, लेकिन एक आपने कहा था ना कि हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो हम पर एहसान है, उन्होंने हमें जिंदगी दी है, मतलब इससे बढ़कर अब हम कोई बात ही नहीं होती। आप देखिए कि मैं एक बात पे गौर कर रही थी कि आप देखिए कुरान के अंदर जगह जगह के ऊपर अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है हुस्न सलूक करें, अगर वो अपनी उम्र के उस पर पहुंच गए हैं कि जब आपकी जरूरत है तो आप उनके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें, अपनी आवाज उनके आगे रेज नहीं करें। हर छोटी छोटी जगह पे हमें हुक्म दिया है उनकी एहतराम का, उनकी रिस्पेक्ट का। आप देखिए कहीं पर, मतलब आप ये देखिए कि अल्लाह ने ये जो सारे हुक्म दिए, तो क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है और वो हमें जानता है कि हम क्या चीज है, तो उसने हमें पहले से बोला है, उसे पता था कि बच्चे कहीं ना कहीं गुस्ताखी करेंगे, कहीं कमी करेंगे, हर जगह उसने हुक्म दिया। कहीं कुरान में ये नहीं कहा माँ बाप को कि माँ बाप ने बच्चों के साथ ये करना है, बिकॉज उसे पता है वो तो सरापा मोहब्बत है। अच्छा, एक ही पॉइंट था, दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि आप देखें कि जैसे लाइक पहले जमाने में जो लोग थे, आप देखिए उनमें इतने पेरेंट्स और बच्चों में इतने बड़े, आई बिलीव कि मुझे लगता है कि नहीं होते थे, ज्यादा मोहब्बतें थी। शायद पहले ये था कि एक टॉलरेंस भी थी लोगों के अंदर, जैसे अपने बड़े अगर कुछ कह देते हैं तो इतना माइंड नहीं करते थे, उनको बड़ा समझते थे कि कोई नहीं हमारे बुजुर्ग हैं, कह दिया। और माँ बाप की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी। आप यकीन करें आजादी, मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटी थी हमारे नेबर में एक रहते थे, वो 7 भाई थे और वो देवर ओल्ड, उनकी अम्मी शी वॉज 90 और 95। उन वो 7 भाई के यहाँ जाती थी, एवरी वीक एक भाई ले जाता था और बहुएं लड़ती थी कि आज मेरे घर आएंगी, मेरे घर आएंगी। और आपको पता है जो उनका बड़ा बेटा था, वो जिस घर में जाती थी उनकी अम्मी, वो उस घर का तवाफ करते थे। आप बिलीव करें, कहते थे मेरी माँ इस घर में।
वो माँ ने अपने बच्चे पाले कैसे थे, तरबियत कैसे की गई थी
जी, यही तो बात है ना। देखिए उन्होंने तरबियत भी अच्छी की थी, और देखिए माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चों की तरबियत अच्छी हो, कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है तो, मतलब मेरा पॉइंट ये कि अगर ये माँ बाप का ज्यादा होता ना, आप रेशियो देखिए, ओल्ड हाउसेस हैं जहाँ पेरेंट्स होते हैं जिन्हें बच्चे निकाल के फेंकते हैं, कहीं कोई ऐसा आपको कोई घर, कोई ऐसी जगह लगती है जहाँ बच्चों को माँ बाप ने निकाला हो?
ये बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स हैं, इसमें आपने ना 5 मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए जिसमें से लीड लेके ना पूरा शो भी बनाया जा सकता है। मेरे साथ रहिएगा मैम, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा पॉइंट। सबसे पहले आपने कुरान के बारे में जो बात की थी, तो जब अगर आप गौर से किताब को पढ़ते हैं, غور سے پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کتاب کو، لیکن جب آپ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اپنے ظرف کے مطابق اس سے چیز نکالتے ہیں، تو رب بندے کے اوپر پرماننٹ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بندے کی سائیکالوجی کے اوپر پرماننٹ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کو سوچنا کیسے ہے، اس کو کرنا کیسے ہے، اس کو امید کیسے نہیں چھوڑنی ہے، اس کو مایوس کیسے نہیں ہونا ہے، ان کو حالات بدلتے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کیسے کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، اس نے اپنے کام کو آگے کرنا کیسے ہے، وہ ایک انڈیویجول کریٹ کر رہا ہوتا ہے، تشخص بنا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا انڈیویجویلٹی کارو کر رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر. انسان جب میں نے پڑھنا اس کو اصل میں شروع کیا، کیونکہ ہر پانچ سال بعد یا چار سال بعد یا تین سال بعد جب اپنے آپ میں چینجز آتے ہیں، زندگی کے مختلف جگہوں سے جب آپ گزرتے ہیں، تو آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے چیزوں کی، دیکھنے کا نظریہ آپ کا بدل جاتا ہے، تو اس میں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر کام کر کے آپ کو ایک مضبوط مائنڈ کا ایک انسان انڈیویجول بنایا جاتا ہے. اور اس لیے ایک پہ کام کر کیا جاتا ہے کہ پہلے انڈیویجول پہ کام ہوگا، اور پھر اور مختلف طریقے سے بار بار بتا کر بھی کیا جاتا ہے، یہ بتا کر بھی کہ تم میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ بتا کر بھی کہ تم میں یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ ساری باتیں کہ تم خدا کا راز ہو. اور ایسی ایسی باتیں بھی آپ سے کی جاتی ہیں کہ اگر آدمی وہ باتیں سن لے کہ رب اس کے بارے میں کیے، تو کہتے ہیں نا رب نے ایسے کیسے کہہ دیا، ایسے کیوں کہہ دیا. لیکن جب آپ غور سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے رب نے آپ کے بارے میں کتنے بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ، یونیورس کے ساتھ، آپ اتنی بڑی توپ چیز ہیں. تو جب وہ چیزیں بناتا ہے، اس کے بعد پہلے انڈیویجول بنے گا، پھر انڈیویجول کمیونٹی بنائے گا. پھر کمیونٹی بنے گی تو کیا ہوگا، کمیونٹی کے رولز ہوتے ہیں، کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، جن کے اوپر سسٹم چلایا جاتا ہے اور پرماننٹ چلایا جاتا ہے. سو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بیچ میں بنانے والے کو معلوم ہے کہ اس میں برداشت کی ضرورت پڑے گی، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، تو آپ کو کیسے چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے، اس لیے آپ کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. سو اس پوائنٹ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن کوئی ہے ریڈیو آزاد؟ السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. آئے ہیں جی وہ شاہکار جن کا انتظار تھا ہم کو، تاکہ آپ یہ شو ہم پارٹ ٹو کر سکیں. جی پروین جی.
جی بہت اچھا شو ہو رہا ہے آپ کا. ویری ویلڈ پوائنٹس آلسو کمنگ ان. یو نو آئی فائنڈ دیٹ ون ہیز ٹو لرن فرام ونز اون ایکسپیرینس.
یس.
یو نو یو جسٹ کانٹ ریلائی کہ بس قرآن شریف نے یہ بتایا یا نہ بتایا. وی ہیو ٹو لرن فرام آر لائف ایز وی گو.
یپ.
You know, because things have changed. ہمارے زمانے میں ہم پیرنٹس کے آگے زبان نہیں کھول سکتے تھے.
جی.
We were neither seen nor heard. We were told to play on our own. We were told that یہ پانچ سے چھ تمہارا ٹائم ہے باہر کھیلنے کا، اس کے بعد تم کو آنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا ہے، پھر ہوم ورک کرنا ہے، اور نو بجے میں آپ کو سو جانا ہے آفٹر ٹیکنگ اے یو نو cleaning yourself and wearing your night clothes and all that.
ٹھیک ہے.
And کروٹ بھی نہیں لینا، کروٹ لیے تو کیا تکلیف ہے تم کو. یو نو اٹ واز لائک دیٹ. وی ویئر براٹ اپ ان دیر واز نو ٹی وی، دیر واز نو ادر انٹرٹینمنٹ. وی جسٹ پلیڈ ود
ود ٹائمز ہیو چینجڈ
یو نو ود آور اون ایج گروپ پیپل اینڈ ود آور اون سبلنگز.
ٹھیک ہے.
اینڈ دیٹ از ہاؤ آور لائف واز. جو کھانے پہ جو ٹیبل پہ کھانا ہوتا تھا وہی کھاؤ.
جی.
نخرے مت کرو.
ٹھیک ہے.
تمہارے لیے کوئی الگ نہیں پکائے گا. آئی ریمبر وین آئی یوز ٹو ہیو ٹینٹرمز اینڈ آئی یوز ٹو کرائی سو مچ ایٹ دی یو نو کھانے کے ٹائم پہ. آئی واز ویری اسمال، آئی واز اے کڈ. تو بس ایک دفعہ میرے دادا نے کہا تم اتنی شور شار کر رہی ہو، تم کو اب یہاں سے میں بیچ کے آؤں گا. تو دیٹ فرائٹن می یو نو. Things like, little things like that, you know, frighten me.
اب زمانے بدل گئے ہیں، ڈیمانڈز بدل گئے ہیں، حالات
بدل گئے. اب میں دیکھتی ہوں تو بس مجھے تو کبھی کبھی حیران پریشان ہوتی ہوں کہ کیا زمانہ بدل گیا. یو نو اب پیرنٹس تو بےچارے بچوں کے پیچھے، ان کے بچوں کے پیچھے اتنا کرتے ہیں، دے برن دیم سیلز آؤٹ. آج ساکر میچ ہے، آج ٹینس میچ ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، سارا وقت ان کو ان کی ایکٹیویٹیز میں. اور بچے کیا کرتے ہیں، آتے ہیں بس وہ فاسٹ فوڈ کا ڈیمانڈ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اینڈ دے وانٹ پیزاز اینڈ دے وانٹ یو نو پروٹین بارز اینڈ دے وانٹ دس اینڈ دے وانٹ دیٹ. آئی مین اینڈ یو نو یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ جنرلی.
جی جی.
About every household has got this problem.
جی.
اور پیرنٹس کچھ بتاتے بولتے نہیں ہیں، نہ چیک کرتے ہیں، بس دے کیپ کوائٹ.
جی. ویک پیرنٹس.
بیکاز دیئر از سو مچ فریڈم گیون ٹو دی چلڈرن ناؤ ڈیز.
جی.
میرے خود کے بچوں کو میں نے ایسی اس طرح میرے میاں اور میں نے بڑا کیا کہ دے وی لائک رول ماڈلز. مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم کیسے کس طرح بچوں کو اتنا اچھا سمی سکھائے, لیکن یو نو اینڈ ہاؤ ٹو اسپیک جینٹلی سافٹ اسپوکن.
اچھا مجھے نا پروین جی, یہ جو ابھی آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں نا, یہ نئے زمانے کے بچوں کے آپ نے بتائے ہیں, مجھے صرف آپ سے نا اس وقت یہ جو اس کے اوپر آئل کم بیک ٹو اٹ آلسو, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک ان لینتھ اباؤٹ دس ٹاپک آلسو, ابھی میں اس میں بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے دو چیزیں. ایز اے سینئر سٹیزن جن کو بچے ہیں, آپ کے بچے اب جوان ہو چکے ہیں, آگے سے ان کے بھی بچے ہیں, میں آپ سے دو چیزیں چاہتا ہوں. ایک, جو آپ کی ایج بریکٹ کے لوگ ہیں, آپ ان کو کیا سجیشن دینا چاہیں گی کہ اپنے جوان بچوں کی جن کی آگے زندگیاں بھی ہیں, پروفیشن بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, ان کے لیے کنوینئنس کیسے کریں, ایکسپیکٹیشن کم کر کے, یا کیسے ان کا ہاتھ بٹائیں؟ پہلے یہ مجھے پوائنٹ دیجیے, پھر اس کے بعد میں ایک سوال اور پوچھوں گا. ٹھیک ہے.
اچھا, یہ تو یہ ایسا سوال ہے کہ اٹس اے ویری تھاٹ پرووکنگ, بیکاز یو کین ناٹ, یو نو آج کل کا جنریشن ایسا ہے کہ یو کین ناٹ نیگ دیم.
ٹھیک ہے, گڈ پوائنٹ. تو آپ صرف سجیشن دیتی جائیں, بتاتی جائیں. جی,
نیگ نہیں کرنا چاہیے بچوں کو, بیکاز اف یو نیگ دیم دے ول ڈرفٹ اوے فرام یو.
ٹھیک ہو گیا, گڈ پوائنٹ. اور
دوسری بات یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی تو جانتے نہیں ہیں.
جی,
اب وہ اپنے ٹیکنالوجی اپنے کمپیوٹرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آئی فونز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آئی پیڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یو آر کمپلیٹلی لیفٹ آؤٹ, یو ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. ان کا ہوم ورک بھی کمپیوٹرز پہ ہوتا ہے.
جی جی.
تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی کچھ سیکھیں, تاکہ ان سے ہم وی ڈونٹ لک دیٹ اگنورنٹ. وی کین ناٹ بی ایز ایکسپرٹ ایز دیم, بٹ وی کین لرن, بیکاز ایج از نو بیریئر. اف یور مائنڈ از
پرفیکٹ, امیزنگ امیزنگ پوائنٹ, بہت ہی ویلڈ پوائنٹ. دوسرا, تیسرا
یہ کہ ہاں, کھانے پینے کے لیے یو ہیو ٹو بی کیئرفل.
جی,
یو نو یو ہیو ٹو پٹ یور فوڈ ڈاؤن ان دس.
جی,
کہ یو نو یو کانٹ ہیو دیز پیزاز اینڈ یو نو دیز آل دیز فاسٹ فوڈ.
جی,
اینڈ ہیمبرگرز, اٹس بیڈ فار
یو. یو کانٹ ریز ا کڈ آن جسٹ چکن نگیٹس فیڈ ود اتنا جو آر بی ایس ٹیز اینڈ آل آف دوز تھنگز.
چکن تو ہارڈلی ون انچ ہوتی ہے.
جی جی, وہ تو اب وہ چکن ہے بھی نہیں, وہ تو انہوں نے ثابت بھی کر دیا نا. جی جی, اور اس میں شوگر لیول اور اس میں جو باقی ہائی کارن فروکٹوز سیرپ.
سمجھدار ہوں گی آپ اگر اف یو ٹرائی, اف یو لرن فرام کمپیوٹر اینڈ گوگل اینڈ فائنڈ آؤٹ تھنگز, یو کین ٹیل یور گرینڈ چلڈرن اینڈ ناٹ لک اگنورنس. یو جسٹ سے ڈونٹ ایٹ نگٹس, بٹ وائی ڈونٹ یو وانٹ ٹو ایٹ نگٹس, بیکاز دیئر از اونلی ون انچ.
ابھی نا تھوڑی دیر. ٹھیک ہو گیا, تین پوائنٹس ہو گئے. چوتھا,
ابھی اور سوچوں.
آپ ایک کام کیجیے گا, تھوڑی دیر میں ایک اور سوال پوچھوں گا آپ سے آن دی ایئر, اور اس میں آپ نے نا ابھی بچوں کی طرف سے پیرنٹس کے لیے پوائنٹس دینے ہوں گے آپ کو. ٹھیک ہے. دیکھیے, پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنا ماسٹر ہے دنیا, لیکن اصل کام ہوتا ہے پرابلمس کے ساتھ سولوشن دینا, سولوشن کے ساتھ الٹرنیٹو دینا, اس کے بعد ایک اور الٹرنیٹو دینا کہ جی یہ مسئلہ ہے تو یہ اس کا حل ہے. میں جتنے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, مینجمنٹ میں کام کرتا ہوں, مارکیٹنگ میں کام کرتا ہوں, فلمز میں کام کرتا ہوں, اسکرپٹ پہ کام کرتا ہوں, جو بھی میں کام کرتا ہوں, میں ہمیشہ لوگوں سے ایک ہی بات کرتا ہوں, میرے پاس تیاری کیے بغیر مت آئیے, کیونکہ جو آدھا گھنٹہ میں آپ کو دوں گا, پھر بیس منٹ اس میں آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کہیں گے میری بےعزتی ہوگی, آپ کہیں گے مجھے کچھ سمجھا نہیں جا رہا, میری عزت نہیں کی گئی, میرے کام کو آپ نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے. وہ اس لیے سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ تیار ہی ہو کے نہیں آتے, اور جب بھی تیار ہو کے بندہ نہیں آتا, میرے سامنے بیٹھتا ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ کا کام تھا, آپ کو یہ کام کرنا کا یہ 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 طریقے تھے, آپ نے ان چیزوں کے اوپر کیا؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں کیا. بتانے کے باوجود بھی ہم لوگ چیزیں نہیں کرتے. تو اسی لیے کسی کو بھی اپنا کام جب آتا ہی نہیں ہے, جب ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کو آتا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہونے والا. سو دو تین پوائنٹس جہاں پر ابھی جو انہوں نے دیے ہیں, پہلے میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح کے بچے ہم آج کل کے ہمارے جو بڑے, انہوں نے کہا ہے کہ جی کنسرن ان کا یہ ہے کہ جو ینگر جنریشن کے جو بچے ہیں, ان کا کھانا پینا, ان کی چیزیں, ان کی باتیں, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, اور اس کے بارے میں میں نے کہا. اور بچے جو اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کے اوپر, پیرنٹس کہتے ہیں جی ان کے باقی فرینڈز یہ کرتے ہیں تو دے فیل لیفٹ آؤٹ, ان کے جی پیئر پریشر کا ایشو ہوتا ہے, یہ نیا زمانہ ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اس وقت جو آپ پودا لگا رہے ہیں نا, اسی نے پھل دینا ہے بعد میں. تو پھر یہی پیرنٹس بعد میں جو گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا, جب ہمارے بچے کسی دوسرے مذہب میں شادی کرتے ہیں تو ان کو موت پڑ رہی ہوتی ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ بائی دا وے, لیکن آپ کو کیونکہ ذہن ہم لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو یہ سب دے دیں گے اور یہ پھر آخر میں ہماری مرضی کریں گے, یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں. آپ درخت میں جب وہ بڑا ہو رہا ہے تو اس میں جو کھاد ڈالتے ہو، اس کے جتنا خیال رکھتے ہو، جس قسم کا پانی، جس قسم کے ویدر میں اس کو لگاتے ہو، وہی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پھل کیسا ہونا ہے. پھل آپ کو چاہیے پائن ایپل، خیال آپ اس کا رکھ رہے ہیں جیسے آپ چاول لگا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کے بیچ میں جب ہم چاہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور راستہ ہم اور اپناتے ہیں تو اینڈ نہیں ملتا ہم کو. تو یہ سختی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے کہ یہ آپ سختی کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے فریڈم کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے. بچوں کو فریڈم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں تو آپ ان کو کھلائیں مات اور بار بار جو وہ مانگتے ہیں آپ ان کو وہی کھلائیں. ان کے لیے اچھا کیا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آپ کو کچھ نہیں کہتی. وہ صرف یہ کہتی ہے کہ مارنا نہیں ہے. وہ صرف یہ کہتی ہے کہ زور زبردستیاں بہت ساری اور چیزوں میں نہیں کرنی کھانا، ورنہ پھر اسٹیٹ کو دے دیں یہ بچے، وہی ان کو کھلائیں پھر ان کو جو نیوٹریشنل جو ویلیوز کے حساب سے جو غذا ہوتی ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کہیں گے تو کوئی نہ کوئی ایشو بن جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھا کھانا کھلانے پہ پولیس نہیں پکڑ کے لے کے جاتی آپ کو. لیکن ہم لوگ اتنا کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں دن بہ دن کہ ان کی مرضی، ان کی آئی پیڈز، ان کی چیزیں، اور پھر رزلٹ ہم آخر میں کہتے ہیں جی ان کو تو ہم نے یہ بھی دلایا، یہ بھی دلایا، یہ بھی دلایا، ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے. تو جب وہ دلایا ہے تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کو اور بھی چیزیں آئیں گی نا. اس قسم کی رانگ جو چپ آن دا شولڈر کائنڈ آف جو فریڈم کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ پہ مسائل پیدا ہوں گے. اور یہ شروع میں آپ نے ٹھیک کرنا ہے. بچوں کا قصور نہیں ہے یہ. بچے نے تو مانگ لیا، دینا نہ دینا آپ کا کام ہے. کچھ بچے پرمنٹ ان کو سمجھ آ گئی ہے پیرنٹس کے کہ ویک ہیں پیرنٹس. وہ کیا کرتے ہیں اسکویکی برڈ کی طرح، وہ مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں. پہلے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں دینا، پھر آپ کہتے ہیں اچھا سوچیں گے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں دینا، پھر کہتے ہیں سوچیں گے، پھر ایک دن آپ ان کو دلا دیتے ہیں. اسی طرح وہ ساری زندگی سمجھ جاتے ہیں. یہ پیٹرن ہے، ان کے بیہیویئر بن جاتا ہے کہ زور لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے، اسکویکی برڈ کو آئل مل جائے گا اپنا. تو یہ ویکنیس ہے ہم لوگوں کی. اور یہ دوسرے کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، دوسروں کو وہ رزلٹ نہیں چاہیے ہوگا، ان کو کوئی اور پھل چاہیے ہوگا. آپ کو جو پھل چاہیے آپ نے اس کے حساب سے چیزیں اپنی کرنی ہوتی ہیں. پھر یہ سٹرگل ہوتی ہے، یہ روز پھر پیرنٹس جو پہلے ترلے مارے ہوتے ہیں ہمارا بچہ نہیں ہوتا، وہ بچہ ہوتا ہے پھر وہ رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں اس بچے نے ہماری زندگی عذاب کر دی ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اپنی بچوں کی ماؤں اور ان کی بیٹیوں اور ان کو بیٹوں کے لے کے اس کو خدا اٹھا کیوں نہیں لیتا، میری زندگی عذاب ہو گئی ہے. یہ وہ ماں باپ جن تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ جو کہ سراپا پیار محبت ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس سراپا پیار محبت کو اتنا تنگ کیا، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں ان کو دی ہیں کہ وہ آخر میں کہتے ہیں یہ مر جائے کم سے کم سکون تو ہوگا. تو یہ سب ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے نہیں سنا تو پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. میں تو روز ان سے ملتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، اس قسم کی باتیں اکثر ہوتی ہیں. تو یہ بیسک چیزیں میں جب ہم اپنا کام نہیں کرتے تو چیزیں سمجھ آتی ہیں. اس میں دوسرا جو پروین جی نے جو دو تین بہت اچھے مشورے دیے ہیں، ایک نیگنگ کرنا. یہ جو ہمارے پیرنٹس اس زمانے میں بچوں کو یہ نیگنگ کرنا اور ہر بات پہ ٹوکنا اور ہر بات پہ روکنا، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر بچے، جوان بچے، 30, 35, 40, 50 سال کے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو ایکچولی بچے نہیں ہوتے، لیکن ماں اگر 70-75 سال کی تو بچے ہی ہوئے ان کے، اور وہ ان کو ابھی بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں حالانکہ ان کے بھی آگے سے بچے ہو گئے اور آگے سے وہ اپنی زندگیاں بھی سنبھال رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اپنی جاب کر رہے ہیں، اپنے بچے پال رہے ہیں اور 10 چیزوں کو اتنی مشکل سے وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ابھی تک اپنی حساب سے ان کو چیزیں بتانے سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے. شروع میں انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا دیکھیں جی ہم اس طرح نہیں زندگی گزار سکتے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے بھی سیکھنا ہے. لیکن یہ لائن ایسے ہے نہیں. یہ لائن ایسے ہے، ہم اپنے ایکسپیرینس سے بھی سیکھیں گے، ہم دوسروں کے ایکسپیرینس سے بھی سیکھیں گے، ہم ہسٹری سے بھی سیکھیں گے، ہم اپنے انوائرمنٹ سے بھی سیکھیں گے، ہم ہر جگہ سے سیکھیں گے اپنے ایکسپیرینس سے. میں بار بار بجلی کے سوئچ میں انگلی دے کر کرنٹ کھا کر یہ نہیں سیکھنا چاہتا کہ یہ بجلی، اوہ اچھا اس میں یہ بجلی ہوتی ہے، سوئچ کو ہاتھ لگاؤں تو یہ کرنٹ دیتی ہے. جب پتہ لگ گیا ہے کرنٹ دیتی ہے، کسی کو لگا ہے exactly الیکٹریسٹی کا قانون آپ سمجھ گئے ہیں، تو انگلی دے کر اپنے ایکسپیرینس سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایکسپیرینس آپ کے خود بخود زندگی میں آپ کو ہو جاتے ہیں. آپ نہیں بھی چاہتے تو ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں. آپ دکھ ہی نہیں ہونا چاہتے لیکن ماں باپ تو مریں گے. آپ دکھ ہی نہیں ہونا چاہتے، فیلئر تو ہوگا. آپ دکھی نہیں ہونا چاہتے، محبوب فوت ہو گئے ہیں یا محبوب چھوڑ گیا ہے یا محبوب کا ایشو ہو گیا یا محبوب کوئی اور پسند آ گیا، یہ تو ہوگا، یہ دنیا ہے. یہ ایکسیڈنٹس کے اوپر، انسیڈنٹس کے اوپر، ایگزامپلس کے اوپر زندگی چلتی ہے. یہ آپ کی اور میری خواہش پہ نہیں چلتی ہے. ये एक सिस्टम के ऊपर चलती है और हम उस सिस्टम में कभी हमें बेनिफिट हो जाता है, कभी हमारा नुकसान हो जाता है। जब बेनिफिट होता है उस वक्त तो हमें कुछ याद नहीं आता, जब नुकसान होता है तो उस वक्त हमें रोना पिटना भी याद आ जाता है और रब के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और लोगों पर इल्ज़ाम लगाना भी याद आ जाता है हमको। जिस इंसान ने हमको अच्छा टाइम दिया होता है, अच्छी चीज़ें दी होती हैं, वो हम भूल जाते हैं। दो चार चीज़ उसने नहीं दी तो सारी ज़िंदगी उसको हम दही की लस्सी बना के खुद भी रिगड़, उसको कभी चीनी डाल के पीते हैं कभी नमक। ये लस्सी में चीनी नमक डाल के पीना तो समझते हैं ना आप। सो ये सब हम अपने साथ कर रहे होते हैं। तो एक्सपीरियंसेस हर तरफ से लेने होंगे। नए ज़माने में आंखें खोल कर जिया जाता है। हर किस्म की चीज़ें, ख्वाब ज़रूर देखें, एक आंख ज़रूर खोल लें, कि रियलिटी बेस्ड को भी कुछ चीज़ें होती हैं। ख्वाब आपका किसी और तरफ जा रहा है और आपके एक्शंस किसी और तरफ जा रहे हैं, तो उसके बीच की अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी और उसके अलावा जो उसका रिजल्ट है, ये दोनों, या अनसर्टेनिटी जो भी आप कहना चाहें, ये दोनों चीज़ें जितनी दूर होती चली जाएंगी उतनी आपकी लाइफ से सुकून दूर होता चला जाएगा। सो एक उनका ये पॉइंट है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो बुज़ुर्ग हैं, अगर बच्चे हर वक्त टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं और ये आईपैड्स पे हैं या फलां चीज़ों पे हैं, तो नए ज़माने के मैंने कई बुज़ुर्ग देखे हैं, फेसबुक पे भी होते हैं, कम्युनिकेट भी करने की कोशिश करते हैं, सीखने की भी कोशिश करते हैं, तो बच्चे उनके साथ हंसते खेलते भी रहते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, इन्जॉय भी करते हैं, लेकिन साथ साथ आप जिस ज़माने में हैं उस ज़माने से रिलेट करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप 70 ईयर्स के हैं, आपकी बेटी कुछ सिखाना चाहती है, आपका इंटरेस्ट शो करना आपका काम है, वरना वो नहीं सिखाएंगे आपको। इसी तरह आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना अगर चाहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड अपना इंटरेस्ट मिलाने की कोशिश करेंगे हम, ताकि चीज़ें वो आप उनसे वो चीज़ सीखना चाहते हैं। जी हमारे ज़माने में ऐसे होता था, वो ज़माना गुजर गया, अब आप उस ज़माने में नहीं है, बच्चों का कसूर नहीं है, वो इस ज़माने में पैदा हुए हैं। ये उनके अपने अख्तियार में थोड़ा था कि वो उस ज़माने में पैदा हो जाते, और दूसरे वाला ज़माना क्यों लेके आए हम पुराना वाला ज़माना वापस। उस ज़माने के हिसाब से जैसे आपने कहा, खाना का जो तरीका था, जो डराने का तरीका था, जो फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता था कभी कभी, बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी सख्तियां की गई, उनकी पूरी पर्सनैलिटी मस्क होके रह गई। सो अगर इस ज़माने में चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, तो हमें इस ज़माने के हिसाब से भी चीज़ों को आगे लेके चलना है। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और भी पॉइंट्स आगे लेके चलते हैं। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर।
अस्सलाम वालेकुम आजादी, कैसे हैं?
जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए।
बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आई हैव टू पॉइंट्स एक्चुअली, के एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आप बाकी टॉपिक कर रहे हैं, जिससे बहुत हमें सीखने को मिल रहा है, कि ये वाला पॉइंट जो एक गिल्ट होता है पेरेंट्स के साथ, और जैसे मुझे भी है कि पापा मेरे जो थे वो पाकिस्तान में थे, और शादी के बाद मैं इधर आ गई, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत मोहब्बत दी, हर लिहाज से मैं बहुत चाहा, लेकिन मैं उस वक्त वहाँ नहीं थी जब वो दुनिया से जा रहे थे, और ये गिल्ट मेरे साथ हमेशा रहता है और मुझे इस बात की तकलीफ रहती है सोच के। तो ये चीज को कैसे, और मेरे ख्याल है ऐसे कई सारे लोग होंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ही होगा कि कोई ना कोई कमी या खिदमत में, तो वो उनको फिर जाने के बाद गिल्ट रह जाता है, तो वो हम कैसे सही करें। एंड अनदर पॉइंट इज के क्या हमारे पेरेंट और बच्चों की रिलेशनशिप इसलिए खराब हो रही है कि हम ये चाहते हैं कि हमने जैसा अपने वालदैन के साथ बर्ताव किया, हमारे बच्चे से हम वही एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि वो उस जमाने के नहीं है ना वैल्यूज उनके, और हमारी फिर रिलेशन खराब होती है, इसकी क्या ये वजूहत है?
नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। दोनों बहुत अच्छे पॉइंट हैं जी। पहली बात, हमारे बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप्स वैसे क्यों नहीं है, या खराब हो रहे हैं, या कम हो रहे हैं, या फलां जैसे हमारे अपने पेरेंट्स के साथ होते थे। देखिए एनवायरमेंट कौन सा था, आप आज से 50 साल पहले पैदा हुए थे अगर, और 50 साल पहले जो एनवायरमेंट था, अगर शहर था तो शहर का एनवायरमेंट था, क्लोज नेट फैमिली सिस्टम अगर होता था, प्रोफेशन लोगों के क्या होते थे, उस फैमिली का बिहेवियर क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ द फैमिली क्या था, उसमें क्या लोग बहुत क्लोज थे या नहीं थे ये, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कैसी की गई थी उस घर की, और उस जो आपका प्रोफेशन और जो पेरेंट्स का प्रोफेशन था, उस प्रोफेशन के हिसाब से वो कितना टाइम निकाल के आपको देते थे, ये सारे अमर और ये सारे जो एक्शंस हैं, अवामिल और अमर, ये जो दोनों चीज़ें हैं, एलिमेंट्स और एक्शंस, ये कौन कौन से आपके ऊपर हुए हैं, उसकी वजह से आपका एक बिहेवियर था, अपने माँ बाप के साथ एक रिलेशनशिप था, और वो एक ज़माने की बात थी। अब इस ज़माने में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, डिमांड्स बदल गई हैं, इन्वायरमेंट पूरे का पूरा चेंज हो चुका है। इसमें जो आपने बच्चों को जो टाइम दिया है, जिस हिसाब से आपने रखा है, बच्चों को बाहर जितने प्रेशर्स और जितनी उनकी लाइफ, पहले बच्चों की लाइफ इतनी बाहर नहीं होती थी, फैमिली के अंदर और चीज़ों में ज़्यादा उनकी लाइफ होती थी, वो इन चीज़ों से जुड़े होते थे। अब उनकी ज़्यादातर लाइफ बाहर होती है। आप सुबह बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं जी, उसके बाद बच्चों का ये जो एक तो स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है बच्चों का, उसके बाद शाम की कोई स्टडीज़ वगैरह उनकी होती है, उसके बाद वो स्पोर्ट्स भी सब कुछ बाहर करते हैं। ये सारी चीज़ें बाहर होती हैं और कभी आप उनको लेके जाते हैं, लेके आते हैं या फिर जो भी आपने इसका बंदोबस्त किया हुआ है, उसके बाद उनके वीकेंड्स कैसे होते हैं, उसके बाद उनकी आउटिंग्स कैसी होती हैं। कॉलेज के ज़माने में हमें तो मैट्रिक में एक दफ़ा गए थे हम 2 दिन के लिए बाहर, 10 साल की एजुकेशन के अंदर हम सिर्फ 3-4 दिन के लिए शायद गए हों बाहर, सोआत चले गए, एक दफ़ा लाहौर चले गए थे शायद। सो उसमें आप बाहर से कितना आपका इंटरेक्शन हुआ है, फिर ज़माना जो था ये इंटरनेट और बाकी चीज़ों में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं लोगों के साथ, पहले लोग मिल के दोस्ती किया करते थे, अब लोग इंटरनेट पे कर लेते हैं और सालों तक चलती रहती हैं और उसी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो करते रहते हैं। सो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों के साथ जो हैं वो इन्फ्लेटेड हैं बेसिकली, मतलब खामखई हमने उनको फुला दिया है। तो अब ये चीज़ें अगर आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपने डाला है उससे एक्सपेक्टेशन आपकी डिफरेंट हैं, बोया आपने गंदम है, अब आप चाहते हैं कि जी इसमें से चने निकलने लगें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपको वैसा ही रिलेशनशिप चाहिए तो फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। उस कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर आपको सिस्टम एक बनाना पड़ेगा घर का, और उसके बीच में कुछ चीज़ें पक्की होंगी कि हम रात का खाना साथ खाएंगे, या हम रोज़ शाम को इसके ऊपर बात करेंगे, या हम फ्लां करेंगे, या ये टाइम हम सिलेक्ट करेंगे, या वीकेंड पे हम ये करेंगे। ये पूरे का पूरा एक सिस्टम बना हुआ होगा जिसके बीच में कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप बच्चे भी और आप भी, आप अपना डालेंगे तो बच्चों को आप बिठा पाएंगे या कर पाएंगे। जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करती या करते, उस वक्त तक हम ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे रिलेशनशिप बच्चों के साथ वैसे हों। दूसरा जो आपका पॉइंट था वो गिल्ट वाला, माँ बाप जब फौत हो जाते हैं या माँ बाप के लिए हम कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते, तो वो पॉइंट बहुत ही अच्छा था और वो बहुत लोग हैं जिनको मैं मिलता हूँ और ये गिल्ट ब्रिक्स जो है ना उन्होंने अपने ऊपर लाद रखी है। माँ बाप से रिलेटेड 2 गिल्ट्स होते हैं जो जितनी भी हम डिस्कशंस होती हैं या काउंसलिंग के सेशंस होते हैं ये पॉइंट्स होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले कॉलर ले लेते हैं फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम।
मैंने जारा जी के जो पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। एक तो टेक्नोलॉजी का, और मेरे घर में इसकी मिसाल है कि मेरे फादर जब पाकिस्तान में थे तो वहां पे तो आपको पता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, बाप को स्पेशली, मन ऑफ लाइक माई डैड डिड नॉट इवन नो कि मैं कौन सी ग्रेड में हूँ, या इतनी ज्यादा क्लोजनेस नहीं होती है जिस माहौल में मैं पली बड़ी थी कि मॉम वॉज बिजी विथ वर्क, लेकिन अबू भी ऐसे नहीं इन्वॉल्व थे। नथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, नथिंग, नॉट कि कंप्यूटर क्या होता है ये भी नहीं पता चला। बट व्हेन यू मूव हियर एंड यू सी पीपल अराउंड इट, तो उन्होंने नाउ ही इज ऑन फेसबुक, ही इज ऑन मीडिया, ही वॉचेज यूट्यूब, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि शी वॉज सो राइट कि आपको चेंज करना पड़ता है वरना आप अकेले रह जाते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है टेक्नोलॉजी में, सो इफ यू वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम यू हैव टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर आप अपनी दुनिया में रहेंगे तो बच्चे भी आपको छोड़ के अलग हो जाएंगे, बिकॉज दैट कॉल जनरेशन गैप बीच में आ जाता है
जी।
तो ये सब चीजें जो है ये हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है लाइफ के लिहाज से, और कुछ चीजें हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारे पेरेंट्स की, एज अ ह्यूमन बीइंग आप डेफिनेटली एज अ पर्सन, और जैसे मेरी नेचर है कि मेरी आई वाज वेरी क्लोज टू माय मॉम, लेकिन सब चीजें आपको नहीं भी पसंद आती हैं जो आप उस वक्त नहीं, आप शादी के बाद आपको होता है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो, या कुछ ऐसी चीजें कि पेरेंट्स स्टिल वॉन्ट कि नहीं आपका रूम कैसा रखा है, या आप मतलब स्टिल इन्वॉल्व इन दीज थिंग, और फिर आप देखते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रही है लेकिन अनइंटेंशनली आप खुद से करने लगते हैं जब आप इस सिचुएशन में आते हैं। तो यू हैव टू वॉच योर सेल्फ कि जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगी हो सकता है आपके बच्चों को भी नहीं अच्छी लगे। एंड आई वॉज डूइंग द सेम थिंग
जी,
लाइक मैं बच्चों के रूम मुझे नहीं पसंद आते, क्लीन अप नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, देन आई कंट्रोल माई सेल्फ कि आई एम डूइंग द सेम थिंग टू अनॉय देम, बिकॉज आजकल के बच्चे पढ़ाई में इतना बिजी होते हैं they cannot keep the room clean. So then I gave them an option ki nahi mujhe unke kamron mein nahi jana chahiye, let them have some time to clean up then go. So ye sab cheeze jo aapko apne parents ko aapko lagta hai ki nahi aapko pasand aayi, sometimes we unintentionally start doing the same thing and then getting annoyed.
ये points जो है ना ये actually बहुत valid point है लेकिन इसकी दो connotation है. थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं. ये जो एक चीज बताई गई है कि हम जब छोटे थे तो हमें कुछ चीजें थी जिसमें हमें लगता था प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहा है कोई, या हमें लगता था कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, या हमें ये चीजों अपने तरीके से करने देना चाहिए. वो सारी चीजें उस वक्त हमें बुरी लगती थी. फिर हम खुद जब पेरेंट्स बनते हैं तो हम ये भूल जाते हैं. तो ये इसको याद रखना बहुत जरूरी है. लेकिन कुछ चीजें जो हैं उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यहां पे, फर्ज करें मैंने आज तक बचपन में जिन लोगों को इल ऑर्गेनाइज देखा है अपने कमरों के साथ, वो आज भी अपने कमरों के साथ, अपनी जिंदगी के साथ और अपने हेड में इल ऑर्गेनाइज है. सो कुछ चीजें बचपन में अगर चीजों को सीधा रखा जा सके, हम सारे बहनों भाइयों में से जो भी सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज थी वो आज भी हैं घर में, चीजों में, जिंदगी में उसमें, और जो नहीं थे वो आज भी नहीं है. सो और दूसरा जिसको इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ चीजें सख्ती से करनी पड़ती हैं. नए जमाने में मैं अपने जितने भी हमारे भांजे भतीजे हैं या जितने हम लोगों को जानते हैं जिनके बच्चे बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, सबके सब ज्यादातर के कमरे जो है ना, एक मेरे जानने वाली थी उनके बच्ची का जो कमरा था, उनको मैंने अंदर जाते मैंने कहा पुत्र ये सस्टा है, बेसिकली सुअर इस तरह की जगहों पर रहते हैं, इतना गंदा है ये. और आप कहते हैं कि मैं आपको रिस्पॉन्स, आपकी मदर के साथ जो आपका इशू चल रहा है उसमें आपको अपनी जिंदगी जीने का वो दें, जिसमें बेड के नीचे कैन से लेकर हर वो चीज जो कि धुलनी चाहिए थी, इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो है उसमें इतना गंद पड़ा हुआ है कि जिस आदमी को इंसानियत के लेवल पे ही अभी वो नहीं आया बचपन में, उसको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से और अपने हिसाब से जीना शुरू कर दे, पॉसिबल ही नहीं है. सो एक तो होते हैं जो बच्चे जिनका पता चल रहा होता है आपको, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और उसके साथ उन्होंने अपनी बेसिक चीजें कुछ कर रहे होते हैं. हर चीज परफेक्ट करने की बात नहीं हो रही है, परफेक्शन तो आप बच्चों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, वो बिजी हैं और भी बहुत सारे काम हैं, हमारे से भी नहीं हो सकती. लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती हैं जब आप उनको ओवरलुक करते हैं तो वो इतना गंद हो जाता है कि यही गंदा बच्चा आप किसी की जिंदगी में घुसेड़ेंगे जबरदस्ती, ये कह कह के कि नहीं नहीं ये आलू भी इसने खुद बनाए हैं, ये माल्टे भी इसने खुद बनाए हैं, ये खजूरें भी इसने खुद बनाए हैं पकौड़ों की तरह. इस किस्म की बातें करके, झूठ बोल के जब हम ये चीजें, या तो फिर उनको अपने तरीके से जीने देना चाहिए क्योंकि आगे इस किस्म के गंद को बर्दाश्त करने के लिए आगे गंदे बंदे बहुत हैं, गंदे बच्चे जो होते हैं या गंदी बच्चियां जो होती हैं. लेकिन अगर आपने सही तरीके से चीजों को रखा और आपने आगे उसकी जिंदगी के डिसीजन लगता है आपको लेने हैं या कुछ चीजों में वो आपकी सुनती हैं या नहीं सुनता, उस हिसाब से फिर आपने चीजों को करना होगा. ये फिर हम क्या करते हैं, जो चीजें नहीं होती हैं और हमें लगता है हमारे बच्चों में है, हम उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें अच्छी अच्छी करके दुनिया को बताते हैं, फिर उसके बाद वो फिर जिंदगी, उनकी जिंदगी फिर आपकी जिंदगी से टकराती है. सो सही टाइम के ऊपर की हुई चीज, बच्चे जैसे हैं, जितना उनके ऊपर, जितनी उनमें आप देख रहे हैं कि एक हद से ज्यादा कोई बुराई आ रही है, हद से ज्यादा कोई टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं आ रहा, हद से ज्यादा सेहत बर्बाद करने के चक्करों में, हद से ज्यादा गंदे कमरे और चीजें हैं, तो वहां पर जगह पे टाइम पे चीजों को करना बहुत जरूरी है. हद के अंदर कोई भी चीज चल सकती है और हर बंदे को सांस लेने से लेके अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से डेकोरेट करना, अपने तरीके से चीजों को रखना, अपने तरीके से अपने दोस्त और चीजें बनाना, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप उनको लेवरेज वगैरह देना चाहिए. लेकिन अगर आगे की जिंदगी आपने बनानी है, देखनी है, तो उसमें आपने डिसिप्लिन को सही करके रखना और चीजों को ठीक करना और ये उनको सिखाना. और ये चीजें सिर्फ वो दो तरीके से सीखेंगे, एक बच्चे माँ बाप का रोल मॉडल, घर का रोल मॉडल होना चाहिए. अगर वो माँ और बाप के, उनके सवालों के जवाब आपको देने आने चाहिए, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड है, चाहे वो अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड है, आप इंडियन पाकिस्तानी या जो भी कल्चर है उससे रिलेटेड है, चाहे वो कमजोरियां हैं हमारे कल्चर की, चाहे वो यहाँ के और जो नए जमाने के यहाँ के जो अच्छे कल्चर की सारी जबरदस्त बातें हैं, इनको, इसको खामखा क्रिटिसाइज करने के बजाय इसको अप्रिशिएट करना और उनको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड की प्रोडक्ट बना के पेश करना, ये हमारा काम है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली थी कि उनको यहां पैदा करें आके, ये उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं, अमेरिका में पैदा हुए वो या बड़े हुए. तो जब हमने ये सौदा उठाया था तो इसके साथ ये कुछ चीजें थी जो हमने देखनी होती हैं पहले और फिर उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाना होता है. तो कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इसीलिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप्स होते हैं, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट कंट्रोल किया जाता है. जो लोग रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होते उनके लिए एनवायरनमेंट कंट्रोल किया जाता है, चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाते हैं, जैसे घर में हम लोग करते हैं. ये सारे काम हम बिजनेस में करते हैं, ये सारे काम हम जॉब पे बड़े आराम से करते हैं, लेकिन इस काम के हमें पैसे नहीं मिलते और इस काम में हमें उतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना हमें घर में, हम चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन उसमें भी ये सारा कुछ. इंसान की जिंदगी सिवाय परमानेंट काम करने के, परमानेंट चीजों को ठीक तरह से रखने में और इसी के बीच में अपनी एंजॉयमेंट निकालने के कुछ खास एक्चुअली है नहीं। और तो अगर आप इसी चीज को फन के तौर पे करें, इसी चीज को अपने रिजल्ट्स अच्छे आने के तौर पे करें, तो जिंदगी बड़ी आसान होगी। वापस आते हैं उस पॉइंट की तरफ जिन्होंने कहा था जी कि माँ बाप के से रिलेटेड गिल्ट, माँ बाप से रिलेटेड डिसेशंस में, बातों में, लोगों की डीप जब साइकोलॉजी, जब उनसे आप बातें करते हैं, जब वो बताना चाहते हैं आपको, या घूम फिर के बात आती है, तो दो चीजों में आती है। एक, लोगों का गिल्ट ये है, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनका गिल्ट ये होता है कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया। अक्सर का गिल्ट ये होता है कि जब माँ बाप फौत हुए तो वो उनके पास नहीं थे। कुछ का गिल्ट ये होता है, काश मैं उनके लिए ये कर सकता, काश उन्होंने मुझे ये कहा था तो मैं ये बात कर लेता, काश मैं उनकी ये बात मान जाता, या काश वो आज ऐसे होते। तो एक बात याद रखिएगा, काश अगर आप उनकी बात मान भी जाते, वैसे नहीं, वैसे भी होते तो फौत तो उन्होंने होना था, जैसे आपने होना है, जैसे हमने होना है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो गिल्ट है कि आपने उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, या आप उनके लिए कुछ कर नहीं सके, आपने जानबूझकर अगर ऐसा किया है तो ये गिल्ट बनता है। लेकिन आपने जानबूझकर नहीं किया, आप दुनिया में रोजगार की तलाश में, अपनी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में घर से बाहर जाना, परदेश काटना शुरू में इतना आसान नहीं होता था जितना आजकल हो गया है। व्हाट्सएप के जरिए, वाइबर के जरिए, वीडियो चैट के जरिए, चीज़ों के जरिए आप वैसे के वैसे ही होते हैं, रोज़ बात हो रही है, फ्री में बातें हो रही हैं। पुराने ज़माने में तो 150 रुपये का एक मिनट, मुझे अभी तक याद है, 150 रुपया का एक मिनट हुआ करता था पाकिस्तान से कोई कॉल किया करता था। अब तो उस 150 रुपये के आपको इतनी कॉलें आना शुरू हो जाती हैं कि आप कहते हैं खुदा दा वास्ता को और काम भी करो, मुझे अपना काम करने दो यहाँ पे। सो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये जो गिल्ट्स, स्पेशली हम लोग मास्टर हैं वो गिल्ट रखने के जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। एक आदमी है वो दुखी है, लेकिन वो उस जो उसका दुख है वो उसकी दवा नहीं करना चाहता, तो ये उसका फेवरेट पास टाइम है। वो दुखी रहकर अपने आप को कुड़ना चाहता है, या वो अपने आप को एक्चुअली पसंद नहीं करता अपने आप को, या अपने जहन में वो बुरा बंदा या बंदी बनना चाहता है, तो ये बीमारी है। लेकिन अपने दुख का मदावा करना और इलाज करना ये भी आपका ही काम है। मसलन ये कि इस दुनिया में मैं देखता हूँ, पहली बात, मैंने अपने माँ बाप दोनों को नहीं देखी, उनकी जब उनकी डेथ हुई थी उनकी बॉडी। सो इस बात को आप बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि मैं वहाँ नहीं था, वहाँ जो थे वो बहुत हैं, काफ़ी थे। मुझे आज भी अपने दोनों माँ बाप चलते फिरते, उठते बैठते, घर से निकलते हुए जब मैं भी घर जाता हूँ तो नज़र आते हैं। वो बात जैसे कभी कभी किया करते थे, कौन सी उनकी चीज़ें होती थी, तो वो मेरे जहन में उनकी वो सारी यादें ताज़ा हैं। आप इसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, एक तो इस तरह किया जा सकता है। कोई शौक से आपने या अपनी पसंद से आपने नहीं किया था, कुछ मजबूरियां थी, कुछ हालात होते हैं, पहुंचने में 24 घंटे कभी कभी लग जाते हैं, उस जमाने में बॉडी इस तरह रखी नहीं जा सकती थी, और 150 इश्यूज होते हैं, खानदान के मसाइल होते हैं, चीज़ें होती हैं जिसमें ये चीज़ें हो जाती, वो चीज़ें जिनका आप कुछ कर नहीं सकते। इसी दुनिया में कितनी माएँ मैं जानता हूँ जो तरस गई हैं बेटे के प्यार के लिए, जो बेटी की इज्जत और टाइम के लिए तरस गई हैं। कितने ही मर्द हैं, कितने ही वालदैन फादर्स हैं जिनको वो जगह नहीं मिलती, वो मुकाम, वो प्यार, वो इंटरेस्ट नहीं मिलता जो वो चाहते थे, तो उनको दीजिए ना। मेरी एक माँ फौत हुई, मैं 10 माएँ बन गई हैं उनके बाद। ये नहीं कि मैं उनको मिस नहीं करता या उन जैसा कोई है नहीं या फला नहीं, लेकिन वो उनसे मोहब्बत उनसे था, एक रूह की एक नीड है मेरी माँ जो थी। तो वो अभी बाकी लोगों की भी इतनी अच्छी माएँ, इतने कमाल करने वाली, इतनी मेहनत करने वाली, इतनी अच्छी माएँ हैं कि मैं उन्हें देखता रहता हूँ तो मेरा दिल वैसे ही उनकी तरफ खींचता रहता है। कुछ फादर कुछ है ऐसे करके जिनसे आपको अपने फादर की तरह की कुछ फीलिंग आती है, चीज़ें आती हैं। खलीक साहब से खैर 10 किस्म का रिश्ता मेरा एक बंदे के साथ, ऑल रोल्ड इन वन, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो फीलिंग आती है। तो जो चीज़ें आप नहीं कर सके, जो वक्त आप उनके साथ नहीं स्पेंड कर सके, किसी और के साथ कर लीजिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब आपके लोग चले जाते हैं तो आपकी की हुई नेकियां भी आपके माँ बाप को पहुंचती हैं, तो कोई नेकी का काम कर लें, कोई उनके नाम के ऊपर कोई अच्छी चीज़ कर लें, उनके नाम का वक्त किसी को दे दें आप, उससे ये सारी चीज़ें, ये सब आसानी करने वाली बातें, ठीक है। एक चीज़, दूसरी एक और बात जो मैं करता हूँ, जो अजीब बात है, मेरे जो लोग, मैं कुछ लोगों के बिना अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये कुछ लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी, माँ बाप हैं, कुछ और लोग हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन के, ये कुछ बाद में मेरी फ़ौज के फ्रेंड्स हैं जो वक्त से पहले दुनिया से चले गए। मैं अपनी ज़िंदगी उनके साथ, मैं उन्हें सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होंगे, वो मेरी ज़िंदगी का सपोर्ट सिस्टम थे, ठीक है। अब कभी कभी जब मैं मौत के बारे में, ये पॉइंट का आपको पता है, मौत मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि हकीकत है, सच है, तो फेवरेट तो होगा, आप रियलिटी की बात करते हैं तो जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक बहुत बड़ी रियलिटी है रब के साथ साथ, यूनिवर्स के साथ साथ, आप इंसान होने के साथ साथ, आपकी रूह के साथ साथ, वो है मौत। और इसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ना, ये साथ लेके जाएगी आपको। ठीक, तो मौत को डर के और बाकी चीजें करने के बजाय, मैं जब सोचता हूं ना मौत के बारे में अपनी जिंदगी की इस जगह पे आके, तो मैं अजीब आपको बात बताता हूं कि अगर मेरी मौत किसी वक्त भी हो जाती है, किसी भी कभी भी हो सकती है, जो लोग ज्यादातर जिंदगी बहुत जीना चाहते हैं ना, अक्सर वो बेचारे जिंदगी से जाते, मैंने अपनी जिंदगी में हर उस बंदे को अपने से पहले जाते देखा है जिसमें जितनी लाइफ थी और वो उस लाइफ को भरपूर जीना चाहते थे और उन्होंने उस लाइफ के लिए प्लान भी बनाया हुआ था अपना सारे का सारा, वो लोग मेरे से पहले जिंदगी में चले गए। ठीक, तो मैं अब ये इस तरह सोचता हूं कि अगर मेरी किसी वक्त भी मौत आती तो आई रियली फील एक्साइटेड टू मीट देम ऑल्सो, बिकॉज अगर मेरा ये फेथ है जो कि होना चाहिए, अगर हम कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं तो हम कहते हैं कि जी देयर इज अनदर लाइफ ऑल्सो जिसमें तमाम लोगों से मुलाकात होगी, जिसमें हिसाब किताब सब कुछ है, तो जो गए हुए आगे वो इतने फैसिनेटिंग लोग हैं, और आप कहते हैं ना ये अपनी मौत की कभी ख्वाहिश नहीं करेंगे, इन्होंने आगे कुछ भेजा नहीं है, तो अगर मैंने कुछ नेकियां नहीं की, कोई अच्छे काम नहीं किए तो ठीक है चलो, लेकिन कुछ ऐसे लोग दुनिया में से जा चुके हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूं, जिनकी मैं कंपनी में मैं खुश होता था, मैं एंजॉय करता था, मैं जिंदा फील करता था, वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। हम जब बाकी लोग भी बनाएंगे आगे चलेंगे तो और लोग मिलेंगे, और लोग बनाएंगे, फिर जिंदगी बनाने की कोशिश करेंगे, हर दफा सपोर्ट ग्रुप टूटता है आप फिर बनाते हैं, हर दफा जिंदगी में आप किसी के साथ चलते हैं फिर वो आगे से खत्म होते हैं, सब कुछ ऐसा ही होता है। ये जिंदगी किसी की भी सर्टन नहीं है, ये रोज बनाने का नाम जिंदगी है, ये हरकत का नाम जिंदगी है, ये चीजों को अपनी अपनी जगह पे रोज बनाकर रखने का नाम जिंदगी है, आप जिंदगी क्रिएट करते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर जाना पड़ जाता है तो कहीं भी छोड़ के जाया जा सकता है, क्योंकि आगे मोस्ट फैसिनेटिंग लोग जो है ना मेरी जिंदगी के, सारे के सारे जो मेरे यार हैं, जो लोग जिनको मुझे जानते हैं मैं कौन हूं, हम क्या चाहते थे, हम क्या करें, वो सारे उसमें से 95% लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे। ठीक, सो अगर आप जिंदगी में सिर्फ सोचोगे ठीक करके, आप प्रोडक्टिव सोचोगे, आप कंस्ट्रक्टिव सोचोगे, ये आपको खुदा ने कमाल ब्रेन दे दिया, ये कुछ भी कर सकता है आपके लिए, इसका सबकॉन्शियस लेवल जो बिलियंस के हिसाब से तेज चल रहा है, अगर आप कॉन्शियस लेवल पे इसको देखें या अनकॉन्शियस, तो उसका मतलब है आप, हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, इसी के जरिए सब कुछ किया जा सकता है, इसी के जरिए रब तक पहुंचा जा सकता है, उसको खोला जा सकता है, समझा जा सकता है, राज खोले जा सकते हैं, अपने बारे में चीजों को जाना जा सकता है। सो जब पता है कि मिलना है तो कुछ दिनों का पर्दा है, दोबारा मिल लेंगे, वैसे भी तो सालों नहीं मिलते थे, तो कुछ ही साल रह गए होंगे या कुछ महीने या कुछ दिन, कौन जाने, या कुछ पल, तो आपको जिंदा रहने का, जिंदगी गुजारने का, चीजों को इंटरप्रेट करने का तरीका आना चाहिए जिससे कोई प्रोडक्टिविटी, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज निकले, जिससे कुछ अच्छी उम्मीद और कोई अच्छी बात निकले, तो गिल्ट भी खत्म हो जाएगी और दुख भी और दर्द भी खत्म हो जाएगा। ये ट्रैक ऐसे बेहतर ट्रैक नहीं हो सकता, चन्ना मेरिया का सैड वर्जन है, उसमें बहुत एक अच्छी लाइन है कि शायद तेरी जुदाई जो है ना, आपकी जो जुदाई है उसकी वजह से मुझे रब कोई पैगाम देता है हमको, लेकिन हमें अपनी ख्वाहिश, अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपने प्लान के आगे पीछे होने का या अपनी मर्जी ना चलने का इतना दुख किसी बात का होता है कि जो असल सारी की सारी कहानी है ना, वो हमारे दिमाग से ही ओझल हो जाती है, और कहने को हम मानने वाले भी हैं, जानने वाले भी हैं, कहने को हमें सब पता है।
हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे
आ। और जनाब बेहतरीन वक्त इस जिंदगी का वो है जो कि महबूब के साथ, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिनकी कंपनी में आप खुश रहते हैं, उनके साथ वक्त गुजारा, या फिर उनकी याद में वक्त गुजारा, या फिर उनके लिए कुछ अच्छी चीज की उनको याद करके। ये तीन ऐसे वक्त हैं जिसमें जिंदगी का ये वक्त जो है बहुत अच्छा कट जाता है, और खुशनसीब है हम में से वो लोग जिन जो ये तीन जिंदगी के औकात, ये तीन मुख्तलिफ वक्त जो हैं ये साथ गुजार सकते हैं। नंबर है जी स्टूडियो का 9725019390। साथ साथ कॉल आ रही थी जी, आप लोगों की कॉल ले रहे हैं, कोई है हमारे साथ रेडियो आजाद यूरोन दिया।
नमस्ते आजाद भाई।
नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं?
बिल्कुल ठीक, वेलकम बैक,
थैंक यू वेरी मच। क्या कहती हैं?
बस टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मुझे लगा मैं फोन कर, वैसे स्पेसिफिकली कुछ कहना नहीं था, लेकिन ये कहना था पेरेंट्स के बारे में कि शायद हम लोग एक बात बहुत देर से समझते हैं कि पेरेंट्स भी इंसान ही होते हैं। एंड आई फील लाइक एज आई गेट ओल्डर एंड ओल्डर, और मुझे लगता है कि व्हेन आई वाज 10 और 12 उस उम्र की जब मेरी माँ थी उतनी अब मैं हो गई हूँ, तो I feel like I don't know anything right now, or I'm just pretending while I'm raising my children.
Actually, most of us, it's not just you, it's most of us, we are mostly pretending because life ka koi expert to hai nahi. Ek cheez jo dynamic hai, jo har vak badalti rehti hai, जिसकी demands har vak badalti rehti hai, jisme aapki apni age ke saath aapki apne aap se demands badal rahi hai, theek hai? रिलेशंस के साथ बदल रही हैं, बच्चों की जो लाइफ और उनके एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से चीजें बदल रही हैं, तो इसमें हमेशा वी आर प्रिटेंडिंग टू बी अ प्रो बट वी आर नॉट, वी कैन जस्ट वर्क ऑन थिंग्स एंड सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू, ऐसा ही है।
दैट्स राइट, और जब तक प्रो होने का वक्त, जब तक प्रो हो जाते हैं तब तक जाने का वक्त आ जाता है।
एक तो जाने का वक्त आ जाता है, मसला ये प्रो वो भी फाइनल प्रो नहीं होते, क्योंकि उस वक्त एनवायरनमेंट फिर बदल जाता है आपके ऊपर, क्योंकि आपके बच्चे जो है ना उस वक्त आप एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे आप और बच्चों के बीच में समझ आता है कि आप मुझे करना क्या है लाइफ के साथ।
हाँ दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो बस वही मुझे कहना था कि पेरेंट्स भी इंसान ही होते हैं, एंड देन इफ वी कैन लुक बैक एंड काइंड ऑफ थिंक ऑफ देम दैट वे आल्सो, तो ये हमारे लिए बेहतर होता है मुझे लगता है।
बिल्कुल ठीक है, और हमने इसी के लिए कोशिश की है कि जो ये जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स का बच्चों का और बड़ों का इस वक्त, क्योंकि उनके नाम मैं जितने लोगों को मिल रहा हूं, अब पिछले शो में आपने पार्ट वन में देखा होगा मुसलसल लोगों के, और बहुत ज्यादा गिले और अनरेस्ट था पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को, और जो पेरेंट्स थे जो एल्डरली हमारे हैं उनका बच्चों की तरफ काफी सारे प्रॉब्लम्स निकल रहे थे कि ये बच्चे आजकल कैसे करते हैं वैसे करते हैं, वो टाइम नहीं दे पा रहे, फला नहीं हो रहा। तो ये दोनों का के बीच का जो इंटरेस्ट है इस रिलेशनशिप को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे साथ रेडियो आजाद यू ऑन द एयर।
जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी?
बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने शुरू का हिस्सा मिस किया है, लेकिन पार्ट वन मैंने पहले सुना था,
वो ठीक था।
तो बिल्कुल मैं कहना ये चाहूंगी कि मैंने कुछ अरसे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम किया, और मैंने ये देखा उनमें कि उनको भी अगर हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो भी वही चीजें फॉलो करते हैं जो एक आम स्कूल के बच्चे करते हैं
जी।
और ये सीवियर ऑटिस्टिक बच्चों की बात कर रही हूँ मैं
जी, जी।
और इतने डिसिप्लिन, और इतना कि वक्त पे किस तरह से टेबल पे बैठ के खाना है, बैग कहाँ रखना है, कब वॉक करनी है, कब नेशनल एंथम वो करना है, सारी चीजें दे यूज टू फॉलो एवरीथिंग। तो मुझे समझ कभी कभार जरा आती नहीं है कि हम जो है माँ बाप या बच्चे, या तो हम अपने बबल्स में रहते हैं या फिर हम जिंदगी की टग ऑफ वॉर में पड़ जाते हैं कि हम चाहते हुए भी तो एक दूसरे को ना एक दूसरे की जबान समझते हैं, ना एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं, ना अंडरस्टैंड करते हैं, कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं
जिस तरह बड़ा किया गया है ना।
जहाँ लॉजिकल पेरेंट्स मैंने देखे हैं वहाँ काफी हद तक लॉजिकल बच्चे भी देखे हैं।
हाँ जी। तो जो आप होंगे ना वही ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेशन मेरे बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरे साथ रहिएगा। ये जो आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, अच्छा हमारे हम लोग देखिए, जिसकी भी अच्छी स्कूलिंग हुई है, जिसको भी घर में पेरेंट्स के साथ एडिक्वेट इनफ टाइम मिला है, जिसको रिलेशनशिप डेवलप करने का या चीजें, बेसिक चीजें जिसके साथ प्रॉपर मिली है ना एक कंट्रोल एनवायरमेंट में, वो अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर कर रहा है उन लोगों से जिनकी लाइफ का कोई सर पैर नहीं था। लेकिन हुआ यह है कि जैसे ही हम लोगों को एक नौकरी मिलती है या हम पैसे कमाना शुरू करते हैं या फिर वो लोग हमसे पीछे हटते हैं, लोग कि भाई अब इनकी अपनी अपने हिसाब से ये चीजें बना लेंगे, ये समझदार होंगे, हम सिर्फ एक स्फीयर में समझदार होते हैं, एक वॉक ऑफ लाइफ में या एक काम में हम समझदार होते हैं, बाकी कामों में हम फिर नासमझी और बेसमझी का शिकार होते हैं। ठीक है, जैसे हम बच्चों के लिए तो सिस्टम बनाते हैं, बच्चों को तो ग्राउंड किया जाता है चीजों के ऊपर, लेकिन वही 30, 35, 40, 45, 50 साल के मेरे जानने वाले बच्चे जहनी तौर पे जो हैं, जो माँ भी हैं, बाप भी हैं, चीजें भी हैं, जो कि अब ग्रैंड पेरेंट्स ही बनने वाले हैं, वो खुद जहनी तौर पर कई चीजों में बच्चे, उन्होंने अपने ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं बनाया हुआ। वो हम लोग ये समझते हैं कि हमारा अब डिसिप्लिन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम बड़े हो गए हैं और उनका खाने पीने का, उनके सोने का, उनका कोई बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का और ये वाली सारी चीज़ों का अपने पे उनका कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन वो बच्चों पे सिस्टम बना के वो समझते हैं कि हम बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स तो आप बहुत अच्छे हैं, उनको उनकी सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते, वो ड्रग्स में हैं या नहीं, वो जो है उनके दोस्त कैसे हैं, ये उन पर तो आपने नज़र रखी हुई है, लेकिन खुद आप ये सारे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चे आपको देख नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं से, या नज़र नहीं आ रहा ये सब कुछ? ये आपको लगता है कि आप इतने स्मार्ट हैं कि आप हर चीज़ कवर कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे कोई लूप होल्स ना छोड़ें, एक बात। दूसरी बात जो भी शनाज जी के बहुत ही अच्छा पॉइंट था, हम में से बहुत सारे लोग इस बहाने से कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं बेगम और बच्चों के लिए या मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ, या वो कहते हैं, मैडम कहती हैं जी कि मैं फैमिली के लिए तो कर रही हूँ, क्योंकि हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, हमारे अंदर की तकलीफें और हमारे अंदर के कॉम्प्लेक्सेस और हमारे अंदर की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी ही नहीं हुई हैं, तो अब हम उनको पूरा कर रहे हैं ये बताकर कि ये मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं। हो सकता है बच्चों को सिर्फ आपका थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए हो, उसके बजाय आप गाड़ियां दिला रहे हैं, या उसके बजाय आप उनको बाकी आईपैड्स और नया से नया सेलफोन ला के दे रहे हैं। ये एक नई बीमारी है जो बच्चों में, आप कहते हैं जी वो हर वक्त फोन पे बैठे रहते हैं, फिर आप नए से नया फोन भी ला के उनको दे देते हैं ये बताने के लिए उनकी बर्थडे पे। देयर आर 10 डिफरेंट वेज एंड मींस दैट यू कैन डू थिंग्स। हर बंदा कहता है जी जॉर्ज क्लूनी कमाल है, जॉर्ज क्लूनी ऐसा है, जॉर्ज क्लूनी ने फलां कर दिया है, वो चैरिटी कर रहा है, वो एक्टिविस्ट है, वो फलां कर रहा है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जॉर्ज क्लूनी को बड़ा कैसे किया गया है? जिस दिन सारे बच्चे अपनी स्टॉक अपने घर में स्टॉकिंग्स देख रहे होते थे कि आज सेंटा ने क्या छोड़ा है जी, उस दिन उनके फादर उनको लेके लोगों की सॉक्स भर रहे होते थे, स्टॉकिंग्स भर रहे होते थे कि सेंटा वो उनके लोगों के, जिन लोगों के घरों के सामने चीजें डाल रहे होते थे अपने फादर के साथ, बजाय इसके कि उनको सेंटा ने क्या दिया है। तो आज भी वो दुनिया में सेंटा की तरह लोगों को चीजें दिए चले जा रहा है, उसकी जो भी अपनी लाइफ है, जैसा भी वो उसको चला रहा है। तो क्या ट्रेन किया आपने बच्चों को? इन बच्चों से आप क्या और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके लिए आप इनके आगे फरिश्ते बन जाएंगे और ये आपके लिए कमाल कर दें? क्या जहन बनाया है हमने अपने बच्चों का? मैं अपने स्माइली दोस्तों को देखता हूं और मैं फिर अपने आप को देखता हूं। हम जब बच्चे थे हमें किसी ने नहीं बताया, सिर्फ एक 10 मुहर्रम को सबील लगती थी जब हम रूह अफजा बना के बाहर रखते थे और हमारे जो शिया भाई होते थे जब ये गुजरते थे तो हम उनको शरबतें पिलाया करते थे। ये वाहिद कम्युनिटी सर्विस का काम था, ना कि इलाके में जमा करके कभी हमने सफाई की। कभी कभी मस्जिद में ईद के दिनों में हम झंडियां लगा दिया करते थे, इसके अलावा कोई चैरिटी और कम्युनिटी सर्विस का काम नहीं था। तो फिर आप कहते हैं जी स्माइली जो लोग हैं वो बड़े क्लोज नेट सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया है अपनी तनख्वाह में से ज़कात के पैसे निकाल कर वहां पे दे के आना और इस तरह की और बहुत सारी चीजें। और हर बंदा, वो मिलियनेयर भी है, बिलियनेयर भी है, वो सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहन के खड़ा होता है, अपनी ड्यूटी दे रहा होता है वो बंदा, ये सब ट्रेन किया जाता है, हमको नहीं किया गया। जिनको ट्रेन किया गया जाहिर बात है उनका सिस्टम हमसे बेहतर होगा। लेकिन जब मुझे समझ आ गई चैरिटी की क्या वैल्यू है, समझ आ गई कि आपने अपना टाइम कैसे देना है, मैं जिंदगी में जो मर्जी करूं ना करूं, ये 2 घंटे का टाइम जो कुछ मैं सीखता हूं या समझता हूं वो जो मैं आप लोगों तक पहुंचा देता हूं, इस तरह जो भी जहां जहां पर भी हमें कुछ ना कुछ देने को मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने स्पेशल फील करना है ना अपने आप को, हो सकता है ये आजाद थॉट में डाली जा सकती है बात कि इफ यू वांट टू फील स्पेशल इट माइट बी बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन, कि आपने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपने अपनी थॉट से क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपने अपने पैसे से क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपने अपनी दोस्ती से, आपने अपने फील से क्या कंट्रीब्यूट किया है रिश्तों में। ये जितने लोग कहते हैं जी आजाद जी ऐसे हैं फलां है मुल्कों में, लोग ऑन एयर आके बहुत सारी बातें करते हैं, तो मैं तो इंशाल्लाह नहीं रहूंगा कल जिंदगी में, कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन क्या मैंने हमने जो किया है 2, 4, 6, 10 दिन जी जिंदा रहेगा? जब तक जो लोग मेरे साथ हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, मेरी ये बात सुन रहे हैं, उस वक्त तक जब तक वो जिंदा है मैं भी उनके दिलों में जिंदा रह सकता हूं। लेकिन हम इसके लिए कुछ करें तो सही, ख्वाहिशात के आप जिंदा रहें, ख्वाहिश के आप बड़ा कमाल काम करें, लेकिन उसके लिए आप कुछ करना नहीं चाहते। सो ये चीजें हैं, ये डिस्कनेक्ट है हमारी ख्वाहिश में और जो चीज हमको मिलनी है उसमें एक ह्यूज डिस्कनेक्ट है। ये चाहना कि आपकी इज्जत की जाए लेकिन आप कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे आप इज्जत चाहते हैं वो आपको इज्जत दे। ये चाहना कि आपको मोहब्बत चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे आपके लिए दिल से मोहब्बत निकले। और फिर मुझे नहीं दी गई चीज, मुझे नहीं दी गई। आज एक बहुत अच्छा सवाल आया, उन्होंने पूछा जी कि ये हम लोग जो हैं ये पेरेंट्स बच्चों से और बच्चे पेरेंट्स से गिले ही क्यों करते रहते हैं, क्योंकि पिछला भी शो लोगों ने सुना, ये वाला भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, इतने गिले हैं बच्चों को अपने पेरेंट्स से कि आप सोच नहीं सकते। वो बेचारे उनको थोड़ी बताएंगे, वो तो उसको बताएंगे ना जो सुनता है या सुनती हैं। और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने इस काम के लिए, क्योंकि जो कुछ मैं सीखूंगा समझूंगा, बाय द वे इस शो में ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको लगता होगा कि जी ये सख्त हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, फलां हो रहे हैं, वो मेरा पर्सनल उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने 150 लोगों से बात की, उसमें से 147 लोगों ने जो बात की वो मैंने आपको बता दी। 3 बंदे वो भी थे जिन्होंने ये कहा। तो इसमें मेरा नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना है ही नहीं, ये रियलिटी जो हो रहा है वो बेस करके। जितने ज्यादा लोग एक बात बता रहे हैं मैं उतना आपको बता रहा हूं कि नटशेल में आके आखिर में ये बंदा ये बात कर रहा है। इसीलिए जब मैं लोगों से बात करता हूं तो बहुत ज्यादा वो इतनी लंबी मुझे बात सुनाते हैं और बीच में मैं बीच में काट के कहता हूं मसला ये, कहते हैं हां जी आपको कैसे पता? जी मैं वली हूं, कैसे पता मुझे? मुझे इल्हाम होता है? नहीं, क्योंकि यही बात असल में होती है ही 8-10-15 मसले। उन 8-10-15 मसलों की वजह से हमारी पर्सनैलिटी पूरी डेवलप ही नहीं हो पाई। 40-50-60-70 साल के बच्चे कर लेने से आप मेच्योर नहीं हो जाते। एज से आ जाने से, सर में चांदी आ जाने से, जेब में सोना आ जाने से आप मेच्योर नहीं हो जाते। बिजनेस कर लेने से, कंपनियां बना लेने से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लेने से मेच्योर नहीं हो जाते आप, या आपकी थॉट्स पक्की नहीं हो जाती हैं। उसके और बड़ी चीजें होती हैं जो करने से होती हैं, चीजें ऑब्जेक्टिव रखने से चीजों को होती हैं। अपना पर्सनल उसमें से बाहर निकाल के, जो चीज मैंने पर्सनल बतानी होती है मैं वो डायरेक्ट बताता हूं। सो ओवरऑल जो कुछ चल रहा होता है, जो कुछ भी डिश आउट आपको हो रहा है, ये हमारा इर्द गिर्द की सोसाइटी का असल फेस हो जाता है कभी कभी चीजों में। तो जितने माँ बाप अपने बच्चों से दुखी हैं कि वो टाइम नहीं देते, वो इज्जत नहीं करते, उनके पास हमारे पास बैठने को नहीं है टाइम, उनका अपने बच्चों को स्पोर्ट्स और बाकी बच्चों के लिए वो इतना करते हैं, हमने उनके लिए इतना किया है उसकी वजह से हमें कभी वापस नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं जी हमें, बाय द वे एक मैं आपको बात बताऊं, ये ओल्ड हाउस में जाने का कोई इशू है नहीं बाय द वे, ये हम लोगों ने खुद अपने जहन में बना दिया है कि ये कल्चर में बुरी बात है। आई वुड वॉन्ट टू गो एंड रिटायर इन अ ओल्ड होम, आई हैव नथिंग, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट, व्हाई वुड आई बॉदर अदर्स इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं बीमार हूं या मैं तबीयत मेरी खराब है। वहां पे और बहुत सारे लोग होंगे हमारी एज के, उसमें आप वहां पे फन निकालें, वहां को बुढ़ी और मोहब्बत फरमा लें, उसके साथ को बुढ़ा है उसके साथ प्यार मोहब्बत करें, कोई और काम करें, जो भी आपने करने का, जो भी है, जिस तरह आपने वो वक्त भी अच्छा करके गुजारना है। ये बड़ी उम्र जो है, या ये मैं देख रहा हूं ये कुछ बच्चों का खेल नहीं है, ये दर्द होने से लेकर या आंखें कमजोर होने से लेकर अगले और जो बहुत सारे मसाइल आने, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। फौज में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई जाती हैव अ हार्ट, और फिर हाउ इज द मोराल, हाय सर, तो मोराल आपका हाई होना और ये सारी चीजें, ये तो सब कुछ होगा। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी जिंदगी की चीजें हैं, तो उनका सवाल ये था कि जी हम माँ बाप को बच्चों से इतने गिले किए, बच्चों को माँ बाप से इतने गिले क्यों हैं? एक सिंपल सा इसका रीजन है और बहुत दुखी रीजन है इसका। लेकिन उससे पहले ट्रैक ना कर लें, बहुत सारे उन लोगों के लिए जी जो कुछ भी कर लें, इतने दुखी पेरेंट्स हैं, इतने दुखी पेरेंट्स हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, उनकी बातों में वो बीच में रोना शुरू कर देते हैं। वो लोग जो कि बिजनेसेस करते थे, कंपनीज चलाते थे, इतना कुछ करते थे, वो बच्चों का नाम लेते हुए बच्चों की वो ना भी बोलना चाहें तब भी रो पड़ते हैं। और दूसरी तरफ से बच्चे हैं, उनके माँ बाप ने उनकी शादियां अपनी मर्जी से गलत लोगों से करवा के, अपनी मर्जी से उनके प्रोफेशन रखवा के, एक बेदिली की परमानेंट लाइफ है जो कभी ख़त्म नहीं हो रही है, बोझ उनके कंधों के ऊपर है। और माँ बाप इतना कुछ करने के बावजूद आज भी उनसे खुश नहीं है, और कोई ना कोई गिल्ट ब्रेक्स उनको दिलाते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दोनों दुखी हैं और कहते हैं हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आपका कभी दिल नहीं आता कैसी मोहब्बत है जिसमें परमानेंट मिजरी है, परमानेंट दुख है, सिर्फ कुछ चीजों को ना समझ कर, कुछ चीजों को अपनी मर्जी ना करने देने पर, कुछ चीजों को वक्त के हिसाब से ना समझने पे, कुछ चीजों पे पीछे हट जाने पे, जो बहुत अच्छा रिश्ता दोनों के बीच में हो सकता था, जो चेहरे जब मर जाते हैं तो फिर कहते हैं जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फिर भी तकलीफ रहती है आपको, जिंदा हैं तो भी तकलीफ है, रिश्ता है जिनके माँ बाप से अच्छा वो भी दुखी हैं, जिनका नहीं रिश्ता माँ बाप से वो भी दुखी हैं। ये घुमा फिराकर दुख देने का जो गुरुदत्त हम बने हुए हैं अपने आप को, मुझे आज तक इसकी समझ नहीं है कि आप दुनिया में रहना चाहते हैं और दुखी हैं और दुखी रहना चाहते हैं और इसमें से बाहर निकलना नहीं चाहते, और फिर आप दूसरों से कहते हैं आपको वो निकालें, और कोई नहीं किसी को निकाल सकता क्योंकि आप खुद निकलना ही नहीं चाहते एक चीज से, तो कैसे निकालेगा कोई आपको। लीजिए एंजॉय करें, ऐसा हाल हो जाता है सब दुखी लोगों का, कुछ भी कर लें।
दूर मंजिल है राग गुजर तन्हा, रास्ता खत्म ही नहीं होता, रेजा रेजा है ख्वाब आँखों में, कैसे कह दूं के गम साहिबान तो है, तेरा एहसास तेरी खुशबू है, मेरे अपनों का एक मान तो है, ये चरागों को क्या बुझाए
अकल करो भैया, दर्द कम हो जाएगा। नंबर है स्टूडियो का 9725019390। एक दो चीजें और जो हमें बचपन से बताया गया है जी, जिंदगी एक इम्तिहान है, जिंदगी एक दुखों की जगह है, जिंदगी है या तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, और जिंदगी जो है इसमें तो इंसान जो है वो सिर्फ दुख उठाने के लिए आता है। ये सब झूठी फिलॉसफीज हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी जिंदगी। जिंदगी वो है जो आप इसको बनाते हैं, यही जिंदगी जो है इसमें आप अपना जिंदगी में खुद को बनाते हैं, मकसद जिंदगी का आप खुद बनाते हैं, और जिंदगी का जो एंड है ये आप खुद सजेस्ट करते हैं तमाम चीज़ों का। रब जो है आपको, उसने तो सिंपल कह दिया तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसकी तुमने कोशिश की। जब हमने कोशिश जहालत से निकलने की नहीं की तो फिर अंदर ही रहना है, दुख से निकलने की कोशिश ही नहीं की। वो एक्शन जिनकी वजह से हमें दुख मिलते हैं वो एक्शन ही हमने नहीं बदले। कोई है हमारे साथ वीडियो आज रोंदे कॉल। मकसद को समझा कीजिए जिसके बारे में बात हो रही है ना, जब तक आप आएंगे इसके लिए गपशप के लिए लिसनर शो होते हैं जो कि कल होने वाला है। बाय द वे लिसनर शो में आपके कुछ ईमेल्स आई हुई हैं वो हमने पढ़नी है, कुछ पॉइंट्स हैं लोगों के जो उन्होंने भेजे हैं उसके बारे में बात करनी है, टॉपिक से हट के कोई भी बात जो है वो आप लिसनर शो में करेंगे तो अच्छा भी लगेगा और लिसनर शो भी बन जाएगा। ठीक है, 9725019390। वापस आते हैं जी उस बात की तरफ जो कि पूछी गई थी कि ये जो पेरेंट्स को बच्चों से गिले हैं, बच्चों को पेरेंट्स से गिले हैं, ये हम लोगों के ओवरऑल इतने गिले क्यों हैं? खुदा से हमारे गिले होते हैं, रिश्तों से हमारे गिले होते हैं, दोस्तों से हमारे गिले हैं, मोहब्बतों से हमारे गिले हैं, सगी औलाद से हमारे गिले हैं, तो ये गिले का क्या प्रॉब्लम क्या है, असल गिलों की रीज़न क्या है? देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। कोई भी चीज़ बिना मकसद के वजह के नहीं होती। रेडियो आज़ाद, यू आर ऑन द एयर।
अस्सलामुअलैकुम।
जी वालेकुम सलाम।
अच्छा, अगर हम लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइक यंग कपल्स जो अभी हम लोग जो स्पेशली दोज पीपल लिविंग इन यूएसए, हम लोग जो हैं, तो हमारे जो बच्चों का है इट्स टोटली डिफरेंट होता है जो हम अपने पेरेंट्स का, मैंने सीनियर सिटीजन के बारे में जो बोला था पॉइंट, तो लाइक अगर हम यहाँ का लेते हैं तो टोटली बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं, लाइक हमारे बैक होम में जो हुआ करती थी। तो आपको मैं मसला, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे पेरेंट्स का अक्स होते हैं। हम ये करते हैं कि हम खुद तो लाए कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं अपने बच्चे से कि वो सच बोले। बच्चा ऑटोमेटिकली वो एडॉप्ट करता है जो हम कर रहे होते हैं, भले आप उसे कहें या ना कहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपके ही ये वर्डिंग्स है जो मैं उसको फॉलो करती हूँ कि हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप यकीन करें कि मेरी बेटी जो है ना स्कूल से आती है ना, अभी माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी मेरा ये हाल है कि वो जैसे आती है ना मैं उसको गोद में अपनी लैप पे लिटा के रैप करके उसको कंफर्टर में उसे बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। वो मुझे सारे दिन की अपनी स्कूल की बातें बताती है। हमें भी टाइम देना होता है बच्चों के लिए, ये नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों को बेचारों को कहते हैं उनके पास टाइम नहीं। आपको पता है लव से तो कौन सी चीज है जो नहीं पिघलती। आप मोहब्बत दीजिए तो बच्चों को टाइम तो दीजिए। अब मेरी बेटी आती है, अब यकीन करें उसको मैं पूछती हूँ क्या हुआ बेटा, सब वो हर बात सिंगल चाहे वो अच्छी है या बुरी है वो मुझसे शेयर करती है। और अगर कोई बात ऐसी है जो मैं समझती हूँ कि उसके लिए ठीक नहीं थी, मैं रिएक्ट नहीं करती उस वक्त, ना मैं उसको डांटती हूँ, लेकिन मैं लेटर जब थोड़ी सी वो हो जाती है बात, फिर मैं उसे समझाती हूँ कि बेटा नहीं ये बात ऐसे नहीं थी, आपको ये नहीं करना, आप ऐसे करो। आपको पता है पहले मैं थोड़ी सी जरा एग्रेसिव हो जाती थी, लेकिन मैंने चेंज किया आपके शोज से, आपके ज्यादातर शोज से मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया बेटी के साथ, उसके साथ मोर फ्रेंडली हुई हूँ। तो अब पता है आपको यकीन करें कि इतना अच्छा रिलेशन मेरा मेरी बेटी का है कि वो हर टॉपिक पे मुझसे बात करती है
जी।
उसको कोई मुझसे डर नहीं होता कि मेरी मम्मा डांटेगी या मेरी मम्मा नाराज होगी। तो ये बहुत जरूरी है, हमें अपने बच्चों के साथ पहले रिलेशन, हम लोग मटेरियल चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको आईफोन दिला दिया, आईपैड दिला दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, बच्चे ये नहीं चाहते। मेरी बेटी ने लिटरली मुझे बोला था मम्मा ये मटेरियल चीजें नहीं चाहिए।
नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग बिजी ये जो बात है इसके ऊपर समझ सकें। एक जो उन्होंने पॉइंट, असल जो पॉइंट इसमें से निकला है वो है, एक तो तरह आपके पास कोई चॉइस हो, आपके पास बच्चों से दोस्ती करने के अलावा चॉइस है ही कोई नहीं, देर इज नो अदर चॉइस। इसी दोस्ती में आप टफ लव भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसी दोस्ती में आप डिसिप्लिन भी बना सकते हैं, इसी दोस्ती में आप जो हैं वो बाकी सारी चीजें जो चाहते हैं एक रिश्ते से वो हासिल कर सकते हैं। आखिर में रिश्ता रहेगा सिर्फ दोस्ती का ही। आप जो बात अपने दोस्त को माफ कर देते हैं वो अपनी बहन को नहीं माफ करते, भाई को नहीं माफ करते, बेगम को नहीं माफ करते, शौहर को नहीं माफ करते, लेकिन दोस्त को माफ कर देते हैं आप। वही बात, दोस्त इंसान दोस्त होना, वली खुदा का दोस्त, मतलब क्या है? दोस्ती ही सब कुछ है। हम लोग किसी और चक्कर में, क्योंकि हमने दुनिया को साबित करना है कि मैंने आखिर अपने दोस्त से शादी कर ली, मैंने आखिर अपने दोस्त, हमने कुछ अजीब चीजें डाली हुई हैं अपने जहन में, हमें समझ नहीं आई कि जिंदगी जो कल है ही नहीं उसको जमा करेंगे। बाय द वे एक बहुत अच्छा टॉपिक भी आया हुआ है ईमेल, वो हम कल सुनाएंगे आपको, उसमें लिविंग इन द मोमेंट के बारे में, प्रेजेंट जो है आपके पास इसके अंदर हम लोग नहीं जीते, स्पेशली उन्होंने कहा देसी हम लोग, तो उसकी रीजन क्या है, वो क्या है, इसके ऊपर एक टॉपिक भी हम लोग रखेंगे। सो ये पॉइंट, दोस्ती ही एक चॉइस है इसके, और इस दोस्ती की हम ही ने इसको कैसे बनाना है, इस दोस्ती के अंदर ही तमाम रिश्ते जो हैं वो सांस भी ले सकते हैं और चल भी सकते हैं, चाहे माँ बाप बूढ़े हैं, चाहे यंग हैं, चाहे बच्चे हैं, या कोई भी है, कोई है हमारे साथ। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर।
Assalamu alaikum.
Ji, wa alaikum salam.
I'm back again.
Ji.
Can I talk?
Welcome back. Why not?
Achha. You know, we parents, agar bachon ko kuch sikhana hai apna culture, to they should start when they are young.
Mm-hmm.
When the children are young, because their minds are, you know, young and they can absorb things and they can learn from their parents what is our culture. Because once they are teenagers and they become independent and they're exposed to the Western culture and other cultures, then it's very difficult for them to, then they start comparing.
Mm-hmm.
And then, you know, then fights can happen in the family. You are not following our culture and you are, you know, and you should teach them all cultures are good, but take the best out of the other cultures.
Ji.
Don't just, you know, be a copycat.
Ji. Bahut achha point.
And secondly, you know, like, if they are teenagers and you start explaining things to them, ke dekho ye ya ye aisi cheez nahi karna chahiye, then the person become rebellious.
Aapko lagta hai ki hamare bachche, hamare ye jo bhi jitne bhi aapne spheres ke andar humne bachchon ke bare mein baat karni hai, chahe wo culture hai, chahe wo religion hai, chahe wo language hai, chahe wo clothes hai, jo bhi hamara hai, in sab ke liye parents are well equipped, they have that well rounded personality with which they can convince their kids. Aapko lagta hai ki hain itne well equipped?
No, the parents have to become open minded. Mm-hmm. They have to come out of their narrow mindedness and see what and also take part in other people's cultures and other people's religion and find out and become curious and find out things for yourself.
Mm-hmm.
What is best for your child. You see, once you expose them to other cultures and religions, then you can't expect the child, you know, not to.
Uska na, parmi.
Wo jab correct karo, to phir bachcha
rebellious ho jata
hai ki nahi, ye to mujhe nahi sikhaya gaya, and I think what I'm doing is correct.
Mm-hmm.
At that time, they are in no position to learn.
Not nice so of you. Thank you very much.
You have to teach them from.
Good point.
And also, give them, you know, quality time. Be, you know, talk to them when they, even when they are teenagers or older, talk to them and, you know, exchange ideas with the children.
Mm-hmm.
Don't show off your parenthood authority.
All the time. Nice of you, ma'am. Thank you very much. Vapas aate hain, readdress karne ji in do actually points ko. Koi hai hamare saath, Radio Azad, you're on the air.
Hello, Assalamualaikum.
Ji, wa alaikum assalam.
Okay, do teen points mujhe just add karne. Ek to ye ke, जैसे हमारे फैमिली में पहले होता था कि पेरेंट्स और बच्चों में काफी डिफरेंस होता था, रिस्पेक्ट, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कर सकते. सो वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम नाउ विच वी हैव. और मैंने नोट किया है कि मेरे हस्बैंड पहले थोड़े रिजर्व रहते थे बच्चों से, लेकिन जब उन्होंने बच्चों के साथ हंसी मजाक, उनको चीजों में इन्वॉल्व करना एंड एवरीथिंग, सो द रिलेशन बिकम वेरी क्लोज. लेकिन उसमें भी एक लिमिट होता है कि ये रिस्पेक्ट है, इसके आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते. तो किड्स still do the fun stuff, fun activities. My teenager girls sit with the dad like itni close hai ki mujhe bhi kabhi jealousy hoti hai ki come on yaar main bhi hoon kuch. But the thing is I enjoyed it too ki mashallah se itni closeness jo maine apni life mein nahi dekhi. Lekin ye hai ki mere bacche jo hain wo unko malum hai ki okay there is a limit ki iske aage humne respect bhi deni hai. Ye nahi hai ki hamare yahan ye law hai ki you cannot disrespect anybody in the house, outside the house. मेरे पास सीनियर्स भी होते हैं, माई किड्स आर नॉट अलाउड टू डिसरिस्पेक्ट देम ईदर. और फिर यही आपके सामने आएगा क्योंकि आप जो बच्चे जो होते हैं वो घर का माहौल देखते हैं कि हाउ यू लिविंग योर लाइफ. सो वी इफ यू वॉन्ट योर किड्स टू बी अ गुड पर्सन, यू हैव टू बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर देम. डोंट ऑलवेज ब्लेम द किड्स.
नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच. वेरी गुड पॉइंट जी. इसमें एक दो जो पॉइंट्स थे, अक्सर आप लोगों बच्चों को लेके लोग जाते हैं या आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जी हमारे बच्चे का थोड़ा सा दिमाग जो है वो इस तरह का हो चुका है तो आप उनसे बात करें. कभी रिलीजन के बारे में बात होती है, कभी चॉइस ऑफ प्रोफेशन के बारे में बात होती है, कभी बहुत सारी बातें होती हैं. तो मैं पेरेंट्स को हमेशा एक बात करता हूँ कि पहली बात है, बात मैंने नहीं करनी, बात आपने करनी है. बच्चा आपने पैदा किया, ठीक, आपका बच्चा है. आप अगर इसको ये नहीं रिलीज, आप अगर वेल इक्विप्ड नहीं है ना, बेसिक रिलीजन के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते, क्योंकि बच्चे ने वो कहा कि जी ये मारना जायज़ है और फलां है और वो जो कुछ भी इंटरनेट से उसने पढ़ा और जो भी तरीके से मैंने माइंड लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, तो जाहिर बात है, तो इसका मतलब है आपने पहले तो अपने वक्त पे काम नहीं किया. ख्वाहिशें रखना बच्चे पैदा करना, उनको गाड़ियां देना, उनको बाहर पढ़ाना और उसके बाद कहना कि बच्चा बहुत ही कमाल है, और उसके जो आपके बच्चे के दोस्त होते हैं वो सब उनके सामने वो सब एक्सपोज्ड होती हैं चीज़ें, सब बच्चों को, जैसे हमें अपने ज़माने में तमाम बच्चों का पता होता था, इस तरह आजकल के ज़माने में भी तमाम बच्चों का पता होता है। जो भी आप कह रहे होते हैं, बच्चे वैसे नहीं होते, बच्चे वैसे होते हैं जैसे बच्चों को पता होता है इर्द गिर्द जो सिस्टम चल रहा होता है उनका, ठीक है। तो एक तो हम जिस भी यूफोरिया में या जिस यू नो यूटोपिया में रह रहे हैं उससे हमें बाहर निकलना होगा, को वी नीड टू स्मेल द कॉफ़ी एंड कॉल अ स्पेड अ स्पेड, और इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। ये सिर्फ आपके नहीं है कहने से वो चीज़ गायब नहीं होगी, वो चीज़ वैसे ही, और आगे आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी या होने वाली हैं जिसमें से हो सकता है आपकी चीखें निकल जाएं, ठीक है, क्योंकि चीज़ है और आप कहें नहीं है, फिर एक दिन मसला पैदा हो जाता है। सो इसमें एक तो आपको वेल इक्विप्ड होना है, अगर आप बच्चों से चाहते हैं कि वो आपका रिलीजन फॉलो करें तो रीज़न एंड लॉजिक से देना पड़ेगा। खुदा बार बार आपसे कह रहा है कि आपने रीज़न एंड लॉजिक से करना है, खोजना है, चीज़ें करनी है, सवाल पूछने हैं, इनकरेज करना है। ये सब आप नहीं करेंगे तो आप वीक बच्चा बाहर निकालेंगे ना। तो मौलाना रोम का जो फेवरेट है मेरा, वो कहते हैं कि जब आप अपने बच्चों को बिना ट्रेन किए, बिना बालों पर निकले हुए, परवाज सिखाए हुए, अगर बच्चा घोंसले से नीचे फेंक गिरता है तो सबसे पहले बिल्ली उसको झपटा मारती है, उसको उड़ा लेती है, फिर आप कहते हैं मेरे बच्चे के साथ ज़माने ने ऐसा कर दिया। ज़माने ने नहीं किया, आपका काम था जिसने बच्चा पैदा किया कि उसके बालों पर उसको फ्लाइंग सिखाना, चीज़ें करना, बेसिक सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब बच्चा पैदा करना चाहिए था। सब करते हैं तो मुझे हो गया, मेरी माँ कहती थी या ये हो गया, या घर में नौकरानी चाहिए थी तो शादी कर ली हमने, या मेड ये थी, या भाई मुझे फिजिकल नीड थी वैसे कर ली, वो ये और 150 तरीके हैं। ये अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो फिर आपको उस तरीके से चीज़ें करनी होंगी। तो हमको इस बात की को समझना है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है, दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे उन्होंने भी कहा जी वो बच्चों के साथ जो आपने रिलेशनशिप रखना होता है, पुराने ज़माने में कहते थे ये ना करो, सवाल नहीं पूछना, क्यों करना है, ये सारी बातें मना थी, ठीक। हम उस ज़माने में बड़े हो गए, उस ज़माने की फिर हमने सज़ा भुगती क्योंकि हमने कुछ पूछा नहीं। तो 18-20-22 साल की उम्र में जब बाहर निकले तो दुनिया टोटली डिफरेंट थी, ठीक है। मैं अक्सर कहता हूँ मैं ऐसा ना होता, जैसा भी मैं अभी हूं, ये बोल के अलावा आजाद है तेरे ये आजाद, ऐसा नहीं होता जैसा उन्होंने मुझे कहा था कि खुदा है, अगर खुदा वैसा ही मुझे नजर आता बाद में, वो बिल्कुल वैसा नहीं था, किताब बिल्कुल मुख्तलिफ थी और रिलीजन ही मुख्तलिफ था। दुनिया में उन्होंने कहा था ऐसा होता है, वो मैं बाहर निकल के देखा, कुछ वैसा नहीं होता था, दुनिया टोटली और तरह से चल रही थी। मोहब्बतों में और दोस्तियों में और वादों में लोग जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, वो कहीं नहीं हो रहा था, लोगों को पता ही नहीं था ये तमाम चीजें क्या हैं। तो उसकी वजह से हमें जो सिखाया गया था जी आप पूरी करना, बाहर जाके देखा कोई पूरी नहीं कर रहा था, फिर सारा सिस्टम बनाना पड़ा, किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी, किससे वादा करना है किससे नहीं करना, किससे रिश्ता रखना है किससे नहीं रखना, कौन जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे देखना है, ना कि बस कहते दीवाने के ख्वाब की तरह चीज़ों को देखना है और फिर कहना है जी मैं पागल क्यों हो गया और फलां ने मुझे पागल कर दिया और बचपन में नहीं बताया गया, बचपन में मोहब्बत नहीं मिली मुझे, फलां नहीं मिला। जो औरत या जो मर्द 40-45 साल का है, अपनी नौकरी करता है, अपने पैसे खुद कमाता है, अपने रिश्ते खुद बनाता है, अपने काम खुद करता है, जब वो मुंह से ये बात निकालता है ना कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली, या मुझे बचपन में वो मुकाम जो था वो नहीं मिल सका, या मुझे फलां नहीं हो सका, वो इंतहाई बेकदरा और नाशुकरा आदमी है, सिस्टम का भी दुनिया का भी। वो सब होने के बावजूद खुदा ने के सिस्टम ने आपको इतना दे दिया है, आप अभी तक उसको रो रहे हैं कि 25 साल पहले ऐसा हुआ था। 40 साल आपकी उम्र है और आप कहते हैं जी कि मेरा कद 5'6" है, आज भी आपको कद का कॉम्प्लेक्स है, आज भी हमको अपने काले रंग का या रंग का कॉम्प्लेक्स है, किधर हम थे, कहाँ हम पहुंच गए हैं, जिंदगी किस तरफ चल रही है, अगला दिन है या नहीं है। तो ये इन तमाम चीज़ों से पता चलता है कि यू नीड टू गेट योर हेड आउटसाइड दैट गटर, बिकॉज वो जो भी आपने बनाया हुआ है, बिकॉज इट स्मेल्स रियली बैड, दैट्स व्हाई इन द थॉट्स इन आवर लाइफ अराउंड अस ऑल्सो, बिकॉज हम किसी अजीब सी दुनिया के गटर में रहते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं और हमारे साथ ये सब हो रहा है। इस सवाल के जवाब की तरफ आना बहुत ज़रूरी है कि जी ये सीधी कुछ बातें आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। अगर आप बड़े सीनियर पेरेंट हैं तब भी और यंगर पेरेंट हैं तब भी, आपके बच्चों से गिले हैं, दुखी हैं आप, या आपके बच्चे दुखी हैं आपसे, या आप अभी तक उन्हीं चीज़ों को समझ पाए, तो उसका एक सिंपल सा मकसद है। इसकी रीज़न सिर्फ ये है, ना आपको पता है कि आप इस दुनिया में किस लिए आए, ना आपको पता है कि आपका जिंदगी में मकसद क्या है और जिंदगी में चैलेंजेस क्या होते हैं, ना आपको पता है कि आपने बच्चे पैदा कर क्यों लिए हैं। सब करते थे इसलिए आपने कर लिए हैं, कभी साबित करने के लिए कर दिए थे, अब आपको उनसे मोहब्बत हो गई है, आदत हो गई है और अब आप उनसे कुछ चीजें वापस चाहते हैं, आपने उन पर खर्चा किया है, नाउ यू वॉन्ट रिटर्न, आपने उन पर मोहब्बत और टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया, नाउ यू वॉन्ट रिटर्न, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट, क्योंकि इसमें उनकी फ्री विल शामिल है, इसमें टाइम बदल गया है, इसमें टाइम की नीड्स और बच्चों की सोच और उसकी समझ और उनके हालात बदल गए हैं, 100% जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी वो आपको नहीं मिलेगी वापस, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आपने बच्चे किए हैं, अगर आपने बच्चे अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढने के लिए किए हैं तो तकलीफ ही रहेगी आपको, अकेले मरेंगे इंशाल्लाह हम सब, ठीक है, और मरना भी ऐसे ही है, पैदा भी ऐसे हुए थे, तो ये जो इन्वेस्टमेंट और जो भी हमारे रीजन ऑफ बीइंग है वो सारे गलत है। जिस आदमी का कोई पैशन नहीं है अपनी जिंदगी में परसू करने का, जिस आदमी का कोई ख्वाब नहीं है अपने फुलफिल करने का, वो सिर्फ गिले करेगा, जिसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है वो हमेशा दूसरों की तरफ देखेगा कि मुझे कब कोई टाइम देगा, मेरी औलाद मुझे कब टाइम देगी, मेरी औलाद मुझे कब कोई चीज़ लेके देगी, क्योंकि आपने अपना पैशन फॉलो करते हुए ना इतने पैसे अपने पास रखे कि खुद अपनी चीज़ें खरीद सकें, ना आपने अपने पास इतना टाइम रखा कि आपकी कोई लाइफ होती, कोई फैंटेसी होती, कोई ड्रीम होता, कोई पैशन होता जो आपको अब कंफर्ट करता, आपने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, आपने ये सब करते हैं कि चक्कर में दूसरों के लिए किया, अभी आपके कख पले नहीं है, तो ये वो रीजंस हैं। जो बच्चे कहते रहते हैं जी हमें फलां हुआ, हमें फलां हुआ, उनको भी ये याद नहीं रहता कि उनके बच्चों, उनकी माँ ने उनके साथ क्या किया था, उनके पेरेंट्स ने उनके साथ क्या किया था, और कम अज कम कितना बनता है। मैंने कहा था ना कि हुक्म है एहसान करो पेरेंट्स के ऊपर, एहसान द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग समथिंग, बेहतरीन तरीके से कुछ करना, या फिर कुछ ना कुछ करना लेकिन बेहतर तरीके से करना, बेशक कम कर सकते हो। किसी ने सवाल पूछा था इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप सब कुछ परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते रिलेशनशिप में तो कुछ कर लो, थोड़ा कर लो, लेकिन उसको कम से कम परफेक्शन तक या बेहतर से बेहतर जरूर कर सको, अगर टाइम स्पेंड करना है या जो कुछ भी करना है। तो ये गिले शिकमों की जिंदगी सिर्फ वो लोग गिले करते हैं, मुझे प्यार नहीं किया गया, मुझे टाइम नहीं दिया गया, मुझसे फलां, कितनी ये डेथ है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये इंसान की मौत है जो बंदा अपने मुंह से ये जुमला बोले कि मुझे प्यार नहीं मिला आपका, या मुझे मेरे मां बाप का प्यार नहीं मिला, या मुझे मेरी इज्जत नहीं मिली जो मिलनी थी। ये चीजें मांग कर लेने की नहीं होती हैं, ये डेड सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी। जो आदमी कहता है जी कि मुझे वो मुकाम नहीं मिला, आपने फलां दोस्त को ये दे दिया और मुझे ये नहीं दिया, इस कंपैरेटिव स्टडी में आप तकलीफ में हैं और आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे, न रब निकाल सकता है ना कुछ, और सारा दिन बैठ के भी तस्बीह करते रहेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून कुदरत तस्बीह पे नहीं चल रहा, कानून कुदरत उसके एक्शन पे चल रहा है जो खुदा का वादा है आपसे। आप इतने लो सेल्फ एस्टीम और रिस्पेक्ट है आपकी कि किसी ने आपकी तरफ नहीं देखा तो आपको मौत पड़ गई है, किसी ने आपको पार्टी में इनवाइट नहीं किया तो आपको मौत पड़ गई है, किसी दूसरे बंदे के साथ हंस खेल के बात कर ली तो आपको मौत पड़ गई है, कोई कुछ बन गया है तो आपको लगने लगा है कि अब वो मेरे साथ वैसी नहीं रहेंगी या वैसा नहीं रहेगा, कोई किसी और के साथ इज्जत मोहब्बत और कदर और टाइम दे रहा है मां बाप को तो आपको लगता है मेरा टाइम खा गया, कोई बच्चों के साथ कुछ कर रहा है शौहर तो आपको लगता है कि मेरी जगह कहां है, या बीवी के साथ कोई कर रहा है शौहर तो बच्चों को लगने लगता है कि भाई मेरी कहां है, किसी और बेटी के साथ कर रहा है तो लगता है जी मेरी कहां है। ये सब इस बात की निशानदेही करता है, क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि आपको अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, आपको अपने ऊपर अपना फेथ को मजबूत करना है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको अपनी खुशी के एलिमेंट के ऊपर काम करना है, आपको अपने लोनली होने के एलिमेंट पे काम करना है, खुद काम करना है आपको, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आपके माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है आपको खुश रखें, आपकी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है आपको खुश रखें, आपके शौहर की जिम्मेदारी नहीं है खुश रखें। आप अगर अंदर से पेन में हैं और दुखी हैं तो किसी का प्यो भी आपको खुश नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी हो जाए ये आपके अपने अंदर, आप खाना ही नहीं खाना चाहते तो हर वक्त नजर में थोड़ी रखो कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको खुद पता होना चाहिए जिस्म को कब फीड करना है, आपको खुद पता होना, आप बाथरूम में नहीं जाना चाहते, बेड बेड करते रहते हैं सारा दिन बैठ के, तो वो कोई जबरदस्ती तो आपको नहीं पता किस वक्त करना है ये सारे काम, इसी तरह आपको नहीं पता कि इस वक्त आपको कोई चीज हो रही है और ये आपको जो इनसिक्योरिटी हो रही है ये इसलिए हो रही है कि आपने अपने आप पे काम नहीं किया। इनसिक्योरिटी की पहली निशानी, यू हैव नॉट डन योर जॉब प्रॉपरली, दैट्स व्हाई यू आर इनसिक्योर, यू थिंक समबडी इज गोना लीव यू, इट मींस इन द रिलेशनशिप यू आर नॉट 100% गिविंग व्हाट यू शुड बी गिविंग, अदरवाइज यू शुड नेवर बी अफ्रेड, एंड इफ यू डोंट डिजर्व दैट पर्सन, समबडी एल्स विल कम हु इज मच मच बेटर देन दैट पर्सन एंड दे विल गिव यू वट यू डिजर्व एंड नॉट दिस पर्सन. एक और बात जो हम भूल जाते हैं अक्सर, एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड. अगर आप ये सोच रहे हैं कि माँ एक दिन बदल जाएगी, बाप एक दिन बदल जाएगा, मेरा बेटा एक दिन बदल जाएगा, एक दिन मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे, एक दिन वो सब्र करेंगे, एक दिन उन्हें अक्ल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, वो दिन नहीं आना कभी. क्योंकि जिसको आज जो कुछ करना है वो कर रहा है आपके साथ. जो बेअकल है, कमजोर है, इल मैनर्ड है, बदतमीज है, बदतहजीब है, जानवर होने की हद तक ज़ॉम्बी है, वो वैसा ही है. एक दिन देखने के लिए शायद आप जिंदा ना रहें. ये जो ख्वाहिश होती है कि एक दिन मैं बदल दूंगी किसी को, या मैं एक दिन बदल दूंगा किसी को, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल जाया किए हैं, इसीलिए इतना ऑथेंटिक साउंड कर रहा हूं कम अज कम इस जुमले के अंदर. लोग जो हैं वो हैं, यू एक्सेप्ट देम द वे दे आर और डिसाइड फॉर योर ओन. इसी तरह हैं लोग. जिसको समझ आती है एक जुमले में समझ आ जाती है, आपके मिलते ही पहले दिन समझ आ जाती है, और जिसको नहीं समझ आती सालों के बाद भी नहीं समझ आती. कोशिश कर करके लोग थक जाते हैं कभी कभी, वो भी कोशिश कर करके थक जाते हैं, वो नहीं समझ सकते, क्योंकि केमिकल्स माइंड के न्यूरो पैथवेज का सेट होना, आपका सेट इन स्टोन होना, कुछ चीज़ों में आपका अपने ऊपर काम ना करना और कुछ चीज़ों में मिजरी को एंजॉय करना, ये तमाम चीज़ें हम लोगों के साथ होती हैं, सिर्फ हमें इनके बारे में पता नहीं होता. जहां तक बात है रिश्तों का, तो रिश्ते जो हैं वो देखिए, अगर अब्राहम मैस्लो साहब जो है ना, अगर हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी नहीं भी देते ना, तब भी मुझे पता होना चाहिए था कि जिंदगी में किसी भी चीज को मजबूती के लिए पकड़ने के लिए 2-4 चीजें जरूरी हैं. वो नहीं बताते आपको रोटी जरूरी है, तो मुझे तब भी पता होना चाहिए कि रोटी जरूरी है, खाना पीना जरूरी है सर्वाइवल के लिए, कपड़ा और मकान वो नहीं भी बताते, तब भी मुझे पता था कि सर छुपाने के लिए और जिस्म ढकने के लिए कपड़ा और मकान जरूरी है. इसी तरह वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना भी बताता, तो मुझे वैसे ही इंसान होने के नाते पता होना चाहिए था कि माँ बाप, बहन भाई, दोस्त बुजुर्ग, मोहब्बत करने वाले, एक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स, ये तमाम लोग जरूरी हैं. ये सुकून का जरिया है, ये ग्राउंडेड फील करने के लिए होते हैं रिश्ते, ये ग्रेटफुल फील करने के लिए होते हैं. अगर मेरे रिश्ते ना होते और मैं बहुत सारे लोगों की चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल ना होता, तो आई एम अ लेजी गाय, आई वुडंट वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन इन माई लाइफ, बिकॉज आई फील समटाइम्स दैट आई हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली फॉर लॉट ऑफ पीपल हु आर बैंकिंग ऑन मी. सो ये रिश्ते होने की वजह से आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आप लेजी नहीं होते. आप जब फेल हो जाते हैं तो उठ के खड़े होकर दोबारा सक्सेसफुल होने की और काम करने की कोशिश करते हैं. रिश्ते हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन इन रिश्तों को अपने लिए अब जहर बना लेना, ये आपके ऊपर है. एक हद तक एक जहर है, संगचूर जो सांप वाला होता है, वो आप एक हद के अंदर जहर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है. उसी को आप बढ़ा लेंगे तो आपकी जान ले सकता है. बिल्कुल इसी तरह ये रिश्ते जो आपके सुकून के लिए हैं, आपकी हद से आगे बेसकूनी का बेइंतहा जरिया है. इसीलिए हर चीज को एक कंट्रोल एनवायरमेंट, यहां पे लोग, हर बंदा कहता है जी मुझे हर बात बता दी जाए, और उनको नहीं पता कि 3-4 सच सुनने के बाद उनकी चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी और सारी जिंदगी या तो ताने बन जाएंगी वो बातें, या फिर वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या कभी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे. उनका ये चाहना कि आप उनसे सब शेयर करें, ये उनकी स्टुपिडिटी है, और आपका उनको ये बता देना, ये आपकी स्टुपिडिटी है. तो कितना बताना है कितना नहीं बताना, ये आप डिसाइड करेंगे. आप रिश्ता रखना चाहते हैं लंबा, तो कैसे चलाएंगे आप, ये आप डिसाइड करेंगे. उनको तो नहीं पता, वो तो कहते हैं हमारे हाथ पे जी अंगार रख दें आप सच का. उन्होंने सारी जिंदगी झूठ बोला, उन्होंने सारी जिंदगी हिपोक्रेसी की, उनको पता ही नहीं सच कितनी तकलीफ दे होती. या एक दुनिया में जिंदा जीने वाला बंदा या बंदी 25-30 साल की उम्र में जब आता है तो कैसी कैसी जिंदगी उसने देखी होती है. जिंदगी तानों से और इन चीजों से बहुत ऊपर की है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो तो नजर आ रहा है ना सबको. सो ये रिश्ते जो हैं हमारे, ये जरूरी हैं हमारे लिए. माँ बाप एक बहुत बड़ा साहिबान है, खुदा की बहुत बड़ी नेहमत है. अगर आप इस रिश्ते को मिसयूज़ करेंगे या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने और उनके बेनिफिट के लिए, तो ये बहुत तकलीफ दे रिश्ते बन सकते हैं. आप खुद भी तकलीफ में रहेंगे और माँ बाप को भी तकलीफ देंगे. दूसरी तरफ ये बच्चों के साथ जो माँ बाप कर रहे हैं, अगर आप अभी तक मैच्योर नहीं हो सके, मैं क्यों कहता हूँ हम लोग मैच्योर नहीं है, मुझे इसी शो में 40, 50, 60, 70, 80 ईयर्स ओल्ड लोगों ने, मर्दों ने और औरतों ने कहा है, आज़ाद जी आपके शो से हमने वो सीखा है जो अपनी माँ से नहीं सीखा, अपने बाप से नहीं सीखा, अपने स्कूल से नहीं सीखा, अपने उस्ताद से नहीं सीखा। इसका क्या मतलब है? रिश्ते तो सारे उन्होंने किए हैं, शादियां भी किए हैं, बच्चे भी किए हैं, काम भी उन्होंने सारे किए हैं, लेकिन ये सारा कुछ क्यों नहीं सीखा उन्होंने? बिकॉज उनको नहीं सिखाया गया। ये सारी बातें हमें पढ़ाई जानी चाहिए थी, सिखानी चाहिए थी, समझदारी से चीजें, हमारा किसी से रिश्ता ऐसा होना था जो उसको बतानी चाहिए थी, वो नहीं बताई लोगों ने। तो अब यहां पे बैठ के हम ये बातें करें और ये सब आगे, अब हमें लगता है जी अब हमें क्या फायदा, ये आखिर दम तक फायदा रहेगा इन तमाम चीजों का। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप जिंदगी से रिलेट नहीं कर पाते, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने अप्लाई नहीं की अभी तक, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं ऐसे हवा में आपसे बोल रहा हूं, ये सब इर्द गिर्द होता है और यही जिंदगी है। तो इसको शेयर करने से जहां जहां भी कोई चीज जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी आप चीजें ठीक कर सकते हैं, अपने जहन में, अपने रिश्तों में, अपनी सोच में, अपनी इबादत में, अपने काम में, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन में, हर चीज में ये चीज यूज की जा सकती है। लेकिन क्लैरिटी ऑफ माइंड इस उम्र में अगर आप सीने, जैसे मैंने बच्चों की तरफ से आपको बताया कि बच्चों का काम है माँ बाप का ख्याल रखना, एक एनवायरमेंट बनाना और एक ऑर्गेनाइज लाइफ गुजारना। माँ बाप बच्चे अब क्या करें, फर्ज करो अगर कोई सोचता है 30-40 साल उम्र है, दो बच्चे हैं आपकी, बेगम साहब हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, टाइम सेट करना पड़ेगा माँ बाप को, फोन करने का अगर वो दूर है, पास है तो उनके साथ बैठने का, क्वालिटी टाइम देने का, उस वक्त अपना फोन, अपनी चीजें, वो सब कुछ कर। मैं खुद करता हूँ अपने बहन भाइयों के साथ, अपने लोग जिनके से मैं कदर करता हूँ, अपनी भांजियां, अपने बच्चे, अपने दोस्त जो भी होते हैं, उन सब से बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालता है आदमी अपने लिए। कुछ चीजें के पीछे भागना बंद करना होता है। कुछ अगर $4,000 में या 5 में गुजारा हो रहा है तो $10,000 मैं नहीं बनाना चाहता, मैं 5,000 गुजार के बनाकर बाकी मैं टाइम अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ, जहनी तौर पर जितने बच्चे उनके साथ बात करना चाहता हूँ, तो वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना टाइम। मैं कैसे अपने आप को हेल्थ में टाइम कैसे दूंगा, मैं अपनी सोचों के लिए अपने आप को कौन सा टाइम दूंगा, मैं अपने बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपना काम करने के लिए कितना टाइम दूंगा, और मैं चैरिटी में कितना टाइम दूंगा, मैं जो मैं कर सकता हूँ मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना टाइम दूंगा। तो इसी तरह अगर आप समझते हैं कि आप मैच्योर हैं और आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, फलां हैं, तो उसकी वजह आपका काम है ये माँ बाप की जगह जो है क्या टाइम कैसे देना है, उनको कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर खुश करना है, और कैसे, इफ़ यू नॉट स्मार्ट, इफ़ यू कैंट मेक समबडी हैप्पी एक्चुअली, इफ़ दे आर नॉट द टाइप के जो आप कुछ भी करें तो वो दुखी हैं, वो उसका फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी सी कोशिश जरूर करेंगे प्रूडेंस के जरिए, डूइंग राइट थिंग्स फॉर राइट रीजन। पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो बीवी का शौहर नहीं है, वो बच्चों का सिर्फ बाप नहीं है, वो आपका भी बेटा है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर बहुत है, उसकी ख्वाहिशात भी अगर ज्यादा हो रही हैं तो उसके बारे में बात करें और बाकी चीजों पर भी करें, लेकिन बच्चों की भी एक्सपेक्टेशन बच्चों से कम करें। सच्ची बात तो यह है, जो आदमी भी मुझे थोड़ा सा वक्त दे देता है, मेरे साथ बात कर लेता है, रेडियो आज़ाद में कंट्रीब्यूट करता है, मेरे साथ थोड़ा जिंदगी के जो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ उसके साथ गुजारा कर लेता है, और मेरे हमारे किसी भी रिश्ते में, ये उसका एहसान है अगर वो मोहब्बत करता है, अगर वो इज्जत करता है। वो ना करे तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, और मैं ऐसा हूँ नहीं तो मैं लोगों से कहूँगा कि आपने मेरी इज्जत नहीं की, या आपने मेरी तरफ देखा नहीं, या आपने मैं किसी के साथ कॉम्पिटिशन करूँगा उनकी लाइफ में, ये मेरे इट्स बीनीथ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, ये अजीब बात है, बुरी लगेगी आप में से बहुत सारे लोगों को, बड़े सेंसिटिव भी लोग होते हैं, कभी कभी वो जुमले गलत तरीके से ले जाते हैं। जैसे मैंने एक दफ़ा कहा था ना, एक दफ़ा मैंने कहा था, लोग कहते हैं जी मैं जीना नहीं चाहता, मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई ख्वाब नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, तो फिर मैं कहता था मर क्यों नहीं जाते? तो किसी ने ईमेल में लिखी, आपने बड़ी सख्त बात की, बट इट मस्ट बी वेरी पेनफुल फॉर यू टू से, इट्स रियलिटी दो, ठीक है? तो इसी तरह ना, एक काम कीजिए, लोगों को अपनी तरह नीच मत समझिए। अगर आपकी सोच नीच, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके कंपटीशन में किसी को ऊपर कर दिया होगा, ये नीच सोच है, तो दूसरों के बारे में ऐसे मत सोचिए। अगर आपको ये लगता है कि किसी ने आपसे प्यार नहीं किया और फलां नहीं किया और दुनिया ने आपसे प्यार नहीं किया, तो ये आपकी नीच सोच है। लोगों को मत नीचा इतना नीच समझें कि उन्होंने ऐसे किया होगा, या जानबूझ के आपको नीचे दिखाया होगा, या जानबूझ पे उन्होंने आपको जलील किया होगा। इस तरह की नीच सोचें मत किया करें। अगर आपको आती हैं, अगर आपको कंफर्टेबल है तो जी लें, लेकिन दूसरों के बारे में ऐसे मत सोचें। हो सकता है लोग इतने नीच ना हो, जब तक साबित ना करें, अनलेस दे प्रूव इट अदरवाइज, तब तक बेनिफिट ऑफ डाउट भी लोगों को देना है। अपनी तरफ से सोच कर, अपनी तरफ से अजाब मत बना लीजिए। अक्सर लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं हमारी जिंदगी में, जानने के बावजूद 10-15-20 साल से हमको जानते हैं, इतनी नीच और इतनी छोटी सोच लेके सामने मेरे आते हैं, उसके बाद कमरे की दीवारें धोने लगती हैं। लेकिन कम से कम मुझे दुख इस बात का होता है कि आप अगर इतने नीच हो सकते हैं तो ये तो ना सोचें कि अगले बंदे ने इतनी दुनिया देखने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतनी चीजें कोशिश करके क्रिएट करने के बाद, इतनी नीच सोच सोचता होगा वो। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना हम। बाकी रिश्ते के बारे में जैसे कहा था, कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे होते हैं, वो एक शेर था, मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर लो, यानी मेरे पे केस ही कर दो या लॉ सूट कर दो, मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर लो, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। तो कई लोग इतने तरस जाते हैं जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जो आप या औलाद हो आपकी, या आपके दोस्त हों, या आपके महबूब हस्तियां हों, कि उनके साथ मुलाकात को लोग तरस जाते हैं, फिर बहाने ढूंढते रहते हैं एक दूसरे के। तो कोशिश करके अगर ज़िंदगी को आसान रखा जाए, अगर आप खलीक साहब की तरह सोचते हैं ना, आप कभी लोनली नहीं होंगे। उनको छोड़ता ही कोई नहीं है, ना उनके बच्चे छोड़ते हैं, ना बच्चों के बच्चे छोड़ते हैं, ना हम छोड़ते हैं, ना कोई छोड़ेगा उनको, ना वो किसी से कुछ चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, गिविंग उनके है। लेकिन गिविंग का मतलब ये नहीं है कि आप अब हर वक्त तो टेकिंग ही करते रहें उनसे। अगर कोई बंदा, आप खुशकिस्मत आदमी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बंदा या बंदी, कोई बुज़ुर्ग या बच्ची या कोई भी ऐसा बंदा है जो गिविंग नेचर का है, ये खुदा की आपके ऊपर ख़ास इनायत और मेहरबानी है। उससे इतना मत मांगिए कि वो बेचारा नस जाए या वो बेचारी जो है वो थक जाए, इतना मत करें। उतना ही करें जितना दे रहे हैं, उस मेहरबानी उनका एहसान है, और कोशिश करके उसको कुछ ना कुछ रिटर्न देने की कोशिश करें अगर आपने कोई चीज़ ली है तो। बाकी दुआ में याद रखिएगा ज़िंदगी। तो फिर मिलेंगे, उम्मीद करते हैं आज के शो में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर निकली होगी। चलिए लाइट सी बात करते हैं आज, छोटी सी बात में है। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो फिर मैंने उसका बना लिया था, हर नाकाम मर्द के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। लेकिन फिर ये भी होता है कि एक, फिर मैंने एक और बनाया, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, और बहुत कामयाब आदमी के पीछे बहुत सारी औरतें होती हैं। फिर लेकिन एक सबसे जो मज़े की चीज़ जो बनी है ना, वो ये है कि हर नाराज औरत के पीछे एक मर्द होता है, हर नाराज औरत के पीछे एक मर्द होता है जो पूछ पूछ के थक जाता है, हुआ क्या है। सो ये आखिर हुआ क्या है भाई, ये तो पता चल जाए, कभी तो ये भी नहीं पता चलता। सो जिंदगी है, ये चलता रहता है, और फिर बाद में जब वो लोग नहीं होते तो उनकी यादें और उनकी बातें फिर हमें याद करके हंसते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, और इसी तरह ज़िंदगी का ये वक्त गुजर जाता है। ज़िंदगी जितनी अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर, बगैर गिलों के, खुशी और ख्वाहिश के साथ साथ चलती हुई अगर गुजर जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर हमने इसको मुसीबत बना दी तो फिर ये पहाड़ है, इसको सर करना बड़ा मुश्किल है जी। सो डोंट टायर द माउंटेन, डोंट टायर योर सेल्फ, टायर द माउंटेन, ठीक है। लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। कुछ नज्म सुनाते हैं और फिर उसके बाद आपसे इजाजत चाहते हैं। खुश रहिए। चलो अब ऐसा करते हैं, चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रख कर, अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रख कर, अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल, मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं, इनको इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने, मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं।
तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
कभी अलविदा ना कहना, कभी